ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಹರಿ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಯೇ ಜೊ ವಿಷಯ ಹೇ ನಾ, ಯೇ ಬಹುತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಹೇ. ಇಸ್ ಪಂಕ್ತಿಗೂ ಬಂದ್ ಕರ್ ಸಕತೆ ಯಾ ತೋ ಸ್ಲೋ ಕರ್ ಸಕತೆ, ಸ್ಲೋ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಹಾಂ ಠೀಕ್ ಹೇ. ಸೊ ಹಮ್ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಇಸ್ ಭೌತಿಕ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಛೋಡ್ ಕರ್ ಆಯೇ ಹೇ. ಕಿತ್ನೆ ಲೋಗೋ ಕೋ ಯೇ ಆಗ್ರಿ ಹೇ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಕುಚ್ ಲೋಗ್ ತೋ ಇಸ್ಕೋ ಮಾನತೆ ಹೀ ನಹೀ ಹೇ. ಕಿಧರ್ ಭಗವಾನ್, ಕ್ಯಾ ಹಮಾರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೇ? ಕೋಯಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಹೀ ಹೇ, ಜಹಾಂ ಪರ್ ಹೇ ವಹಾಂ ಅಚ್ಛೆ ಹೇ. ಲೇಕಿನ್ ಯೇ ಹಮಾರ ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ ನಹೀ ಹೇ, ಯೇ ಸಮಜ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಭಿ ಕೃಪಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಯೇ ಸಮಜನಾ ಆಸಾನ್ ನಹೀ ಹೇ ಕಿ ಯೇ ಹಮಾರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಥಾನ ನಹೀ ಹೇ. ಹರೇಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಹೇ ಫುಲ್ಲಿ ಕಿ ಯಹೀ ಮೇರಾ ಸ್ಥಾನ ಹೇ, ಯಹೀ ರಹನಾ ಹೇ, ಮುಜೆ ಮರನಾ ನಹೀ ಹೇ, ಇಧರ್ ಹೀ ರಹನಾ ಹೇ, ಇಧರ್ ಹೀ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬನಾನಾ ಹೇ, ಇಧರ್ ಹೀ ಕಮಾನಾ ಹೇ, ಯಹೀ ಪರ್ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕರ್ನಾ ಹೇ, ಮೆಹನತ್ ಯಹೀ ಕರ್ನಿ ಹೇ, ಕರ್ಮ ಭಿ ಯಹೀ ಕರ್ನಾ ಹೇ. ಲೇಕಿನ್ ಅಗರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೋ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಹೋ, ಪಾಪಿ ನಹೀ ಹೋ, ಸಿನ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪಾಪಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯ ನಹೀ ಕರ್ತಾ ಹೋ, ತೋ ಕದಾಚಿತ್ ಏಕ್ ದಿನ ಉಸ್ ಪರ್ ಕೃಪಾ ಹೋ ಸಕ್ತಿ ಹೇ. ಯೇ ಅನುಭೂತಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಕಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಯೇ ಮೇರಾ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ ನಹೀ ಹೇ. ಹಮ್ ಲೋಗ್ ವೈಸೆ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಲೋಗ್ ಹೇ, ಹಮ್ಕೋ ಬಹುತ್ ಜಲ್ದಿ ಹೀ ಜೀವನ್ ಮೇ ಯೇ ಪತಾ ಚಲಾ ಕಿ ಯೇ ಹಮಾರಾ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ ನಹೀ ಹೇ, ಯೇ ಹಮಾರಾ ಟೆಂಪರರಿ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಹೇ. ಆಪ್ ಲೋಗ್ ಮೇ ಸೆ ಕಿತ್ನೆ ಲೋಗ್ ರೆಂಟಲ್ ಘರ್ ಮೇ ರಹತೆ ಹೇ? ರೆಂಟಲ್ ಘರ್ ಮೇ ರಹತೆ ಹಾಂ. ರೆಂಟಲ್ ಘರ್ ಮೇ ಕೈಸೆ ಹೋತಾ ಹೇ? ಹಮ್ ಏಕ ರೆಂಟ್ ಭರ್ತೆ ಹೇ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ರಖತೆ ಹೇ, ಔರ್ ಉಸ್ ಘರ್ ಮೇ ಕಭಿ ಭಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಹೀ ಬನಾತೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ ವಾಲಾ, ದಿವಾಲ್ ಪೇ ಠೋಕ್ನೆ ವಾಲಾ, ಯಾ ಕ್ಯಾ ಕಹತೆ ನಾ ಮೊಬೈಲ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಲೇತೆ ಹೇ, ಟೇಬಲ್ ಲೇಕೆ ಉಠಾ ಕೇ ಲೇ ಜಾ ಸಕತೆ ಹೇ. ಲೇಕಿನ್ ದಿವಾಲ್ ಪೇ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಐಸಾ ನಹೀ ಬನಾತೆ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಹಮ್ಕೋ ಮಾಲೂಮ್ ಹೇ ಕಿ ಹಮ್ಕೋ ಏಕ್ ಸಾಲ್ ಕೇ ಬಾದ್ ಜಾನಾ ಹೇ, ಯಹಾಂ ಪರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೋ ಸಾಲ್ ಕೇ ಬಾದ್ ಜಾನಾ ಹೇ. ತೋ ಟೆಂಪರರಿ ಜೋ ರೆಂಟಲ್ ಘರ್ ಹೋತಾ ಹೇ, ವಹಾಂ ಪರ್ ಹಮ್ಲೋಗ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ನಹೀ ಕರ್ತೆ ಕಭಿ ಭಿ, ಮೇಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ರಖತೆ ಹೇ, ತಾಕಿ ಕಭಿ ಭಿ ಉಠಾ ಕೇ ಜಾ ಸಕತೆ ಹೇ. ಸಾಧು ಲೋಕ ಇಸ್ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಐಸೆ ಹೀ ರಹತೆ ಹೇ, ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಎನಿ ಟೈಮ್, ಔರ್ ವೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇ. ಅಭಿ ಮುಜೆ ಕಹಾನಿ ಯಾದ್ ಆ ರಹೀ ಹೇ, ಹಮಾರೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೇ ಏಕ ಸಂತ ಹುಯೇ ಹೇ, ಸಂತ ಗಾಡ್ಗೆ ಬಾಬಾ. ಜಾನತೆ ಆಪ್ ಲೋಗ್, ಸುನಾ ಹೇ ಉನ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ? ಗಾಡ್ಗೆ ಬಾಬಾ ಕ್ಯೂ ನಾಮ ಪಡಾ ಉನ್ಕೋ ಸೆ, ಏಕ 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 ಬರ್ತನ್ ಹುವಾ ಕರ್ತಾ ಥಾ, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಬರ್ತನ್, ಸ್ನಾನ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಭಿ ಉಸ್ ಉಸ್ಮೇ ಸೆ ಪಾನಿ ಲೇಕೆ ಸ್ನಾನ್ ಕರ್ನಾ ಹೇ, ಭೋಜನ್ ಭಿ ಉಸ್ಮೇ ಕರ್ನಾ ಹೇ, ಭಿಕ್ಷಾ ಭಿ ಉಸ್ಮೇ ಮಾಂಗ್ನಿ ಹೇ, ಔರ್ ಅಗರ್ ಶೌಚ ಕರ್ನಾ ಹೇ ತೋ ಭಿ ಉಸ್ಮೇ ಹೀ ಶೌಚ ಭಿ ಕರ್ನಾ ಹೇ. ಏಕ ವಿರಕ್ತಿ ಕಾ ಪ್ರತೀಕ ಹೇ ವೋ ಗಾಡ್ಗೆ ಬಾಬಾ. ತೋ ಉನ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಏಕ ಧನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯಾ, ಬೋಲಾ ಮಹಾರಾಜ್ ಮೇ ಬಹುತ್ ದುಃಖಿ ಹೂ, ಜೋ ಮನ್ ಮೇ ಶಾಂತಿ ನಹೀ ಹೇ, ಸಬ್ ಕುಛ ಹೇ, ಮನಿ ಹೇ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇ, ಬಚ್ಚೆ ಬಾಲ ಬಚ್ಚೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇ, ಸಬ್ ಕುಛ ಹೇ, ಲೇಕಿನ್ ಮನ್ ಬಹುತ್ ಅಸ್ಥಿರ ರಹತಾ ಹೇ, ಔರ್ ಮೇ ದುಃಖಿ ರಹತಾ ಹೂ, ಹಮೇಶಾ ಚಿಂತಿತ ರಹತಾ ಹೂ. ಔರ್ ಜಬ್ ಭಿ ಆಪ್ಕೋ ಮಿಲ್ತಾ ಹೂ, ದೇಖತಾ ಹೂ, ಆಪ್ ತೋ ಬಹುತ್ ನಿಶ್ಚಿಂತ ರಹತೆ ಹೇ, ಆನಂದ ಮೇ ರಹತೆ ಹೇ, ಚೆಹರೆ ಮೇ ತೋ ಶಾಂತಿ ಹೇ ಆಪ್ಕೆ. ಕ್ಯಾ ರಹಸ್ಯ ಬತಾಯಿ ಜರಾ ಮುಜೆ, ತಾಕಿ ಮೇ ಭಿ ಮೇರೆ ಜೀವನ ಮೇ ಶಾಂತಿ ಕಾ ಅನುಭವ ಕರೂ. ತೋ ಗಾಡ್ಗೆ ಬಾಬಾ ಬೋಲೆ ಉನ್ಕೋ, ಅರೆ ತೂ ಕ್ಯಾ ಪ್ರಶ್ನ ಪೂಛ ರಾ ಹೇ ಮುಜೆ, ತೇರೆ ಸಾತ್ ದಿನ ಕೆ ಬಾದ ಮೃತ್ಯು ಹೋನೆ ವಾಲಿ ಹೇ. ತೋ ಅಚಾನಕ್ ವೋ ಪ್ರಶ್ನ ಹೀ ಭೂಲ್ ಗಯಾ ಅಪ್ನಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸಾಧು ಲೋಗ್ ಬಹುತ್ ಹುಷಾರ್ ಹೋತೆ ಹೇ, ಉನ್ಕೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪತಾ ಹೋತಾ ಹೇ ಕಿ ಪೂಛೆ ಗಯೇ ಪ್ರಶ್ನ ಕಾ ಕೈಸೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸಮರ್ಪಕ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೈಸೆ ದೇನಾ ಉನ್ಕೋ ಪತಾ ಹೋತಾ ಹೇ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಹುತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನ ಕಾ ಉತ್ತರ ದೇ ರೇ, ಲೇಕಿನ್ ವೋ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ದೇ ರೇ ಕಿ ದೇಖೋ ಕಭಿ ಕಭಿ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ನಾ, ಆಪ್ನೆ ಮುಜೆ ಪೂಛಾ ಆಪ್ನೆ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ದೇಖಾ ಹೇ ಕ್ಯಾ? ತೋ ಮೇನೆ ಕಹಾ ಹಾಂ, ತಾ ಬೋಲೆಂಗೆ ದಿಖಾಓ, ಆಪ್ನೆ ದೇಖಾ ತೋ ಮುಜೆ ಭಿ ದಿಖಾಓ. ತೋ ಕಭಿ ಕಭಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಶ್ನೋ ಕಾ ಸರಳ ಉತ್ತರ ದೇಂಗೆ ನಾ, ತೋ ಲೋಕ 50 ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಸ್ ಪರ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಬಿನಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೆ, ಹೇ ನಾ. ತೋ ಉನ್ಹೋನೆ ಕಹಾ ಕಿ ಆಪ್ಕಿ 7 ದಿನ ಕೆ ಬಾದ ಮೃತ್ಯು ಹೋನೆ ವಾಲಿ ಹೇ. ಅಚ್ಛಾ, ಏಕದಮ್ ಪೂರಾ ಮಾಹೌಲ್ ಹೀ ಬದಲ್ ಗಯಾ ಪೂರಾ. ತೋ ಲೋ 7 ದಿನ ಕೆ ಬಾದ ಮೇ ಲೌಟ್ ಕೆ ಆಓ ಮೇರೇ ಪಾಸ್. ತೋ ವೋ ಘರ್ ಗಯಾ ಆಪ್ನೆ, ಉಸ್ಕೋ ಪತಾ ಹೇ 7 ದಿನ ಕೆ ಬಾದ ಮೇ ನಹೀ ರಹೂಂಗಾ ಮೇ. ತೋ ಸಾರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಬ್ ಕೋ ಬಾಂಟ್ ದೀ, ಸಬ್ ಪೈಸೆ ಸಬ್ ಕೋ ಬಾಂಟ್ ದಿಯೇ, ಗಹನೆ ಸಬ್ ಕೋ ಬಾಂಟ್ ದಿಯೇ, ಕುಚ ಗಿಲೆ ಶಿಕ್ವೆ ಥೇ ಕಿಸ್ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ನೋ, ಕಿಸ್ಕೋ ಸಾರಿ ಬೋಲಾ, ಕಿಸ್ಕೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೋಲಾ, ಸಬ್ ಕೋ ವೋ ಅಪ್ನಾ ಮಿಲ್ಕೆ ಆಯಾ. ಅಚ್ಛಾ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಜೀವ ಥಾ ವೋ, नहीं तो फिर 7 दिन में वो सब प्रॉपर्टी एंजॉय करने लगता, जो भी खाना पीना रहना वेश्या गमन करता आनंद लेता और फिर आता, तो अलग बात थी। वो हमारी थे ना परीक्षित महाराज, वो भी ऐसे ही थे। सब कुछ होने पर भी वो गंगा किनारे में कोपिन पहन के बैठ गए सुनने के लिए कि बताओ, क्योंकि वो परम भाग्यवान जीव है। तो इसने भी सब कुछ ऐसा ही किया और 7 दिन के बाद लौट के आया गाड़गे बाबा के पास, और गाड़गे बाबा ने पूछा क्या किया तुमने, तो सब कुछ बोला प्रॉपर्टी डिवाइड किया मैंने और गहने बांट दिए, ज़मीन बांट दी, सब बांट दिया, और जिसको जिसको बुरा किया था उसको सॉरी बोला, उसके साथ में इक्वेशन ठीक किया, जिन्होंने मुझ पर उपकार किया था उनको मैंने थैंक यू बोला, उनको कुछ गिफ्ट दिया मैंने। इस तरह सारे मेरे जितने इक्वेशंस है वो मैं सेटल करके अभी आया हूँ। तो महाराज ने पूछा अभी कैसा लगता है आपको, अभी तो बहुत शांत लगता है मुझे, अभी आई एम वेरी पीसफुल, मन में कोई गिला शिकवा चिंता कुछ है ही नहीं मेरे, अभी मन एकदम शांत हो गया मेरा। बोला यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, तुमने पूछा था ना 7 दिन के पहले कि तू तेरी कुछ मृत्यु वृत्यु होने वाली नहीं है, तुमने पूछा था कि शांति कैसे प्राप्त करें, ये उसका उत्तर है। हम लोग शांत क्यों रहते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ आगे का प्लानिंग दुनिया में रहने का करते ही नहीं है, हम लोग कभी भी जाने के लिए रेडी है। अभी आप कैसे रेडी हो, अभी 7 दिन के बाद आप मरने वाले ऐसे मैंने बताया था, तो आप एकदम आज रेडी हो जाने के लिए। आपको पता है आपको एक घंटा भी बोनस मिलने वाला नहीं है, उस तैयारी से आप आए हो, आपको कोई बॉन्डेज नहीं बचा इधर, कोई बंधन नहीं बचा है, तभी आप शांति का अनुभव कर रहे हो। ऐसे ही जियो, हर दिन एक दिन लास्ट दिन है, साधु लोग जीवन में हर दिन एक लास्ट दिन है इस भाव से जीते हैं। उनके लिए टुमारो आएगा और टुमारो मैं ये करूँगा ऐसा प्लान नहीं करते हैं, आज भजन कर रहा हूँ कल भी भजन करूँगा और परसों भी भजन करूँगा और जब चाहे भगवान उठा ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सदैव भजन ही करता हूँ तो भगवान की याद तो आएगी। इसको रियल जीवन कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग को गृहस्थी नहीं करना है, पत्नी पति सब परिवार नहीं करना है, धन नहीं कमाना है, घर सब छोड़ के हिमालय में जाना, ऐसा किसी ने भी कहीं बताया नहीं है। उल्टा अर्जुन चाहते थे कि युद्ध छोड़कर जंगल में जाए, बोलो तो भगवान को उसको प्रोत्साहन देना चाहिए था, अरे गुड यू आर बिकमिंग सन्यासी, आई एम वेरी हैप्पी एट लास्ट यू आर गिविंग अप ऑल दिस थिंग्स, झगड़ा वगड़ा छोड़ के तुम जंगल में जाना चाहते हो, बहुत अच्छा है अभी चले जाओ। नहीं, उल्टा कहा नहीं जाना है तुमको, इधर ही लड़ना है तुमको, कुछ भी हो जाए फाइट करना है, वो भी मेरे लिए फाइट करना है, खुद के लिए फाइट नहीं करना है। तो हमको कोई बता नहीं रहा है, शास्त्र में कहीं भी लिखा नहीं है। उल्टा वो तो ना प्रियव्रत, राजा प्रियव्रत को ब्रह्मा जी ने खुद आकर नीचे बोला, ब्रह्मा जी खुद, ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, मतलब एक निर्माण करता है वो, क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्स, टॉप सीईओ है वो यूनिवर्स के, वो उतरे पहाड़ पर और तपस्या करते हुए प्रियव्रत को बोला अभी उत्तानपाद नहीं रहे, अभी तुम छोड़ो सब कुछ ये और आ जाओ और विश्व कर राजा बनो, चक्रवर्ती सम्राट। तो बोला यहाँ पर अच्छा हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं मुझे, यहाँ पर अच्छी तरह जंगल में रहता हूँ, कोई परेशानी नहीं, कोई व्यवहार नहीं, कोई कोट्यवधि रुपयों का कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं, युद्ध वुद्ध नहीं है, सीमा नहीं है राज्य की, कुछ नहीं है। फिर भी उन्हें कहा कि यह भगवान की सेवा है, तुमको करनी पड़ेगी। तो जो सन्यासी व्यक्ति था वो आकर विवाह किया, अनेक पत्नियों से विवाह किया, राज्य कारोबार किया, सब कुछ दुनियादारी का व्यवहार किया, भगवान की सेवा में किया, लेकिन इसलिए वो पर्वत पर भी तपस्या में शांत थे और बाद में भी शांत थे। तो शांति का सॉल्यूशन क्या है कि हम सदैव भगवान की सेवा में रहे, भगवान के लिए जिए, और सारा जो हमारा प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट, हर समय मनी में नहीं होता है, प्रॉफिट कई प्रकार के होते हैं, पद मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, गौरव मिलता है, धन भी मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है, साम्राज्य मिलता है, बहुत प्रकार के प्रॉफिट होते हैं। वो सारे प्रॉफिट जब हम भगवान के लिए ही अर्पण करते हैं तो भगवान हमारी देखभाल करते हैं, हम सब कुछ उनको अर्पण करते हैं, तो वो जीवन में शांति प्राप्त होती है। लेकिन सब लोगों को ये अनुभूति नहीं होती है, सब लोगों पर इतनी कृपा नहीं होती है, तो क्या करना चाहिए फिर? हम सब लोगों को साधना करनी चाहिए, और साधना करने पर हमको धीरे धीरे ये अनुभूति होगी कि सत्य क्या है। अच्छा निर्णय आदमी कभी ले सकता है जब उसके पास सत्य की इंफॉर्मेशन हो पूरी। अब मेरे पास कोई काउंसलिंग के लिए आ गया, समझो बोला प्रभु जी मैं क्या करूँ, शादी करूँ कि नहीं करूँ, तो मैं इसको क्या बताऊँ? बोला पूरा बैकग्राउंड बता दे ना, घर में कौन है, क्या है, कौन बोल रहा है, आपको क्या लगता है, आपके मन में विचार क्या है, कोई लड़की आपने देखी है, सब सारा जब माहौल देखूंगा, क्या आप शादीशुदा है ऑलरेडी, ये भी पूछना पड़ेगा ना कि आपका डिवोर्स हो चुका है और शादी करने के लिए आए हो, कितने प्रकार के बैकग्राउंड होना। अभी एक लाइन में यू सेल मी, गिव मी वन लाइन आंसर, यस और नो, तो ऐसा काउंसलिंग नहीं होता है कभी भी। उसी प्रकार से जब सत्य से हम अवगत हो जाते हैं तो हमारे जीवन के बारे में निर्णय हम ले सकते हैं। जैसे आप प्रभु जी अपना थाना में घर था कहीं था, वहाँ से आप यहाँ पर फुल टाइम आ गए, तो एक समय अपने निर्णय लिया आपने ना कि अभी ऐसे ऐसे करना है तो अभी यहाँ पर आके रहना है। और सीधे आप अगर किसी को पूछते प्रभु जी मैं थाना में रहूँ कि जेल में रहूँ, तो हम कैसे आंसर देंगे आपको। तो थाना में भी ठीक हो अगर आप भगवान की सेवा में हो, यहाँ पर भी भगवान की सेवा में, यहाँ पर भी ठीक है। नहीं प्रभु बता लो कि थाना में रहूँ कि जेल में रहूँ, तो यू कैन नॉट टेल देम। सो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सत्य का अच्छी तरह से परिचय होना, सत्य के विषय में अच्छी तरह से अवगत होना, यह मनुष्य जीवन का अधिकार है और मनुष्य जीवन में इसकी फैसिलिटी भी दी है। कुत्ता बिल्ली के जीवन में सत्य का कोई काम नहीं है, खाना मिलेगा बस काफ़ी है। लेकिन मनुष्य जीवन केवल उसके लिए नहीं है, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं है, मनुष्य जीवन जो है वो भगवान की प्राप्ति के लिए है और भगवान परम सत्य है और केवल मनुष्यों के लिए स्क्रिप्चर दिया गया है। बाकी कोई भी प्राणी पक्षी सर्प मछली स्क्रिप्चर नहीं पढ़ता है ना, केवल मनुष्य ही पढ़ता है। तो वो स्क्रिप्चर में मनुष्य शरीर में आए हुए देहधारी जीव को कैसे उस देह से मुक्त होना है उसका तरीका पद्धति सब बताई हुई है और उसमें सब ये नॉलेज आता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये मूलभूत ज्ञान है ABCD। अगर आपको सारे आध्यात्मिक ज्ञान का सारांश निकालना है तो 3-4-5 चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। फर्स्ट चीज़ ये है कि मैं कौन हूँ, उसके पहले भी एक चीज़ है मैं कौन नहीं हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं आदमी हूँ, आप सोच रहे हैं मैं औरत हूँ, कोई सोच रहा है मैं डॉक्टर हूँ, कोई सोच रहा है मैं बुढ़ा हूँ, कोई सोच रहा है मैं जवान हूँ, कोई सोच रहा है मैं इंजीनियर हूँ, कोई सोच रहा है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई सोच रहा है मैं और कुछ जाति का हूँ, कायस्थ हूँ। तो सबसे पहले भगवान बताते हैं कि ये इसमें से तुम कुछ भी नहीं हो। तो फिर कौन हो, तो भगवान बताते हैं कि तुम मेरे अंश हो, नंबर वन। वन नंबर मैं बाकी सब नहीं हूँ, टू नंबर मैं भगवान का अंश हूँ, और तीसरा ज्ञान भगवान कौन है उनके विषय में ज्ञान, कि भगवान सब सृष्टि के मालिक हैं, सब जीव के निर्माता है, सब सृष्टि के निर्माता हैं, सब चीज़ के नियंत्रक है, निर्माण करता है, विध्वंसक भी है, नष्ट करने वाले भी वही है, और जीव ये भगवान का डेफिनेशन हो गया। कितना नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। चौथा नंबर मेरा और उनका रिश्ता क्या है, तो मेरा उनका रिश्ता क्या है, प्रेम का रिश्ता है, सेवा का रिश्ता है, मैं उनका अंश हूँ और अंश होने के नाते सेवा करना मेरा कर्तव्य है। और उसके बाद में अल्टीमेट गोल क्या है कि सेवा के माध्यम से उनके प्रति प्रेम निर्माण करना है। और यहाँ से जो बद्ध जीवन है हमारा, जन्म मृत्यु के बंधन में फंसा हुआ जीवन है, दुख से भरा हुआ जीवन है, बीमारी से भरा हुआ जीवन है, 3 प्रकार के ताप से भरा हुआ जीवन है, उससे निकल कर ऐसे जगह पर जाएं जहाँ पर ना सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का कार्य होगा, ना किसी जीव के द्वारा कष्ट होगा, न प्रकृति के द्वारा कष्ट होगा, न मेरे मन के द्वारा मुझे कष्ट होगा। अपने मन के द्वारा कष्ट होता है कि नहीं होता है, हाँ? जवान लड़के को लगता है कि मुझे तो सबसे बेस्ट फिल्म स्टार है, मुझे मेरी पत्नी होनी चाहिए, ये मन बोल रहा है और वही उसके दुख का कारण है क्योंकि उसको नहीं बनने वाली वो। और आप जानते हैं कि एग्जाम आ रही है फिर भी आप टीवी देख रहे हो, एग्जाम में फेल हो गए फिर आत्महत्या का विचार आता है, तो कौन कारण है उसका, मैं खुद कारण हूँ उसका, मैंने समय पर पढ़ाई नहीं किया इसलिए अभी मुझे आत्महत्या करने का विचार मन में आ रहा है, या मैं नशा कर रहा हूँ, जुआ खेल रहा हूँ, ड्रग्स ले रहा हूँ हॉस्टल में रहते हुए, अपने द्वारा दिए हुए कष्ट है। तो ऐसी कोई जगह है जहाँ पर अपने द्वारा भी कष्ट नहीं है, दूसरों के द्वारा कष्ट नहीं है, या प्रकृति के द्वारा कष्ट नहीं है, गर्मी के समय बारिश हो रही है, बारिश के समय गर्मी आ रही है, सर्दी के समय तूफान आ रहा है, ये प्रकृति का कष्ट है जिसको हम कुछ नहीं कर सकते। कल के दिन शरद पूर्णिमा थी लेकिन वृंदावन में इतनी तूफानी वर्षा थी कि चांद का दर्शन ही नहीं हुआ। मुझे बहुत सारे मैसेज आए, आपको हुआ क्या, मैंने हमारे यहाँ पर जीव में बहुत बढ़िया दर्शन हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं, सबको चांद का दर्शन करना है लेकिन प्रकृति आपको अलाउ नहीं कर रही है, सबने खीर रखा लेकिन चांद का प्रकाश पड़ा नहीं उसके ऊपर। तो मतलब यहां पर ऐसी घटनाएं होती जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं, हमको चाहते कुछ है हम और होता कुछ है, और कितने समय तक हमारे मन के विरुद्ध घटनाएं होती रहेंगी किसी को पता नहीं है। यहाँ पर वी आर जस्ट लिविंग, यू नो, नथिंग इज इन आवर हैंड। हम लोग प्लान करते हैं कुछ 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 अच्छा अच्छा होता है, बाकी सब चीज़ें, अधिकतर चीज़ें मन के खिलाफ होती हैं अधिकतर। और ऐसे ही हम लाइफ तक, पूरा जीवन तक सहन करते करते आ रहे हैं और सोच रहे हैं कभी इसका एंड होगा। तो ये सब जो है वो हम शास्त्र के द्वारा सीखते हैं। तो ना हमारे एक गुरु बंधु है, हाँ, वो अभी बहुत बढ़िया, अभी उनकी 75 ईयर्स की एज है और वो बहुत वरिष्ठ भक्त हैं अभी, उम्र से भी है और भक्ति में भी वरिष्ठ है। तो जब भी वो एक दिन युवा अवस्था में थे तो वो आत्महत्या करने निकले थे, ट्रेन के नीचे जाकर अपना आयुष्य समाप्त करने का प्लान कर रहे थे वो। और हमारी भारत भूमि है ना, इतनी बढ़िया भूमि है, आप ना कभी भी कहीं जाओगे ना, इंडिया में कहीं भी जाओगे, गांव में, शहर में, कहीं भी जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी म्यूज़िक सुनाई पड़ेगी। या तो शादी चल रही है किसी की तो बहुत अच्छा म्यूज़िक चल रहा है, या और कोई नवरात्रि है, गणपति है, दीपावली है, दशहरा है, और गांव में तो आए दिन उत्सव रहते हैं। हमारे पास शहर में तो लोगों को टाइम रहता नहीं और नॉलेज भी रहता नहीं, लेकिन गाँव में इतने उत्सव रहते हैं, कोई झूला झूल रहे हैं, झूलन उत्सव कर रहे हैं, तो हर समय कुछ ना कुछ संगीत वाद्य और उत्सव चलते रहता है। भारत उत्सव प्रिय देश है, कुछ भी नहीं तो अपना एक उत्सव खुद का बना लेते हैं और उसमें डांस करते रहते हैं। दिस इज इंडिया। तो वो बेचारे फाटक है ना, फाटक जो स्टेशन से दूर रहता है और ट्रेन गति में रहती है, वहाँ पर जब सिग्नल आता है तो फाटक खुल जाता है और हम लोग चले जाते हैं उसमें, जाकर वो बीच में खड़े हो गए, ट्रेन आएगी तो कूदूंगा उसके नीचे। तो उसके बीच में उनको ना लाउड स्पीकर में एक आवाज़ आया, गीत आवाज़ सुनाई पड़ा, सुनना है आपको गीत। वो एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के चले तले। ये हमारे मन्ना डे के आवाज में बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर गीत है वो, मुझे अभी भी अच्छा लगता है बहुत। अभी ऐसे गीत नहीं आते, अभी हमारे बचपन में ऐसे अनेक पिक्चर के गीत हुआ करते थे जो एकदम फिलोसॉफिकल और रियलिटी के साथ जुड़े हुए गीत थे। तो वो रुक गए, उनको लगा अरे मैं इस दुनिया को छोड़ने का प्लान कर रहा हूँ और ये गीत सुना रहा है कि कोई और एक दुनिया ऐसी है जहाँ पर कोई गम नहीं है, आंसू नहीं है, प्यार ही प्यार है, कहाँ होगी दुनिया ऐसी। तो उन्होंने मरने का प्लान कैंसिल कर दिया, ही कैंसल्ड द प्लान ऑफ सुसाइड, और घर चले आए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि ऐसी कौन सी जगह है मुझे बताओ, आप ही सब मालिक हो, आप ही बता दो। तो कई दिन विचार किया और एक दिन राधा गोपीनाथ मंदिर में पहुंच गए और वहां से जो जर्नी शुरू हो गई। तो वापस कभी आत्महत्या का प्लानिंग नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वहां उनको पता चला कि ऐसी दुनिया किधर है जहां पर गम भी नहीं है, आंसू भी नहीं है और सब जगह प्यार ही प्यार है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम सबको प्यार की आवश्यकता है। हम सब लोग प्रेम ढूंढ रहे हैं, हमको लगता है कि आप पति ढूंढ रहे हैं, हमको लगता है कि हम पत्नी ढूंढ रहे हैं, बच्चे ढूंढ रहे हैं, पैसा ढूंढ रहे हैं, ऐसा एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली इनके माध्यम से हम प्रेम ढूंढ रहे हैं, प्रेम का अनुभव ढूंढ रहे हैं, जो हम सबको अंदर से प्रेम की आवश्यकता होती है। हम लोग विवाह को करते हैं बताओ, ताकि सोचें कि पति पत्नी प्रेम करेंगे। विवाह के बाद बच्चे को जन्म देते हैं, सोचा कि बच्चों की तरफ से प्रेम मिलेगा, बच्चों को बड़े करेंगे तो आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा। कुछ भी कार्य करते हैं, कपड़े पहनते हैं या कपड़े लाते नए, और क्या बीवी को पूछते हैं कैसे हैं, अच्छे लग रहे हैं। आदमी को ना कोई लोग चाहिए साथ में, किस लिए चाहिए, टू हैव रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप किस लिए चाहिए, प्रेम के अनुभव के लिए। तब तक आदमी को जब तक प्रेम का अनुभव नहीं मिलता है वो सेटिस्फाई नहीं होता है। उसके पास कितना भी धन हो, कितना भी प्रॉपर्टी हो, कितना भी पद हो, अधिकार हो, पावर हो उसके पास, लेकिन जब तक उसके पास प्रेम नहीं है तब तक वो आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है। मैं माइकल जैक्सन को देखो, क्या लंबी ऐसी दास्तान है उसकी, एक आइलैंड था पूरा उसका, एक व्यक्ति का, एक बेट आइलैंड एक व्यक्ति का, और इतना धन था, इतना धन था, लेकिन नो लव, एक व्यक्ति के साथ प्रेम नहीं उसका। सब लोग खाली सराहना करते हैं, उनको वाह वाह करते हैं, उनके लिए थैंक यू करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन रियल प्रेम करने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। जो भी सब थे इर्द गिर्द सब स्वार्थी लोग थे, उसके पैसे की वजह से उसके चिपके हुए थे। डॉक्टर ने अल्टीमेटली उसके पैसे के लिए उसको एक्स्ट्रा दवा देके उसकी डेथ हो गई, और ऐसे ही ड्रग्स लेते 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 ज़िंदगी समाप्त हो गई। और आज भी लोग, कुछ लोग पागल होते हुए उसका टी शर्ट पहनते हैं, माइकल जैक्सन। हमारे बचपन में सब लोग माइकल जैक्सन का टी शर्ट पहनते थे। तो ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं, कि ये सब कुछ होने पर भी आदमी को शांति नहीं है। वो इतना डिप्रेशन में था, इतना वर्ल्ड स्टार था वो, हर आदमी उसके पोजीशन में रहना पसंद करेगा, इतना वर्ल्ड फेमस स्टार था वो। तो आपको क्या लगता होगा कि इतना फेमस स्टार तो वो सब खुशियाँ ही खुशियाँ उसके चरणों में लुटांगन मतलब वंदन करती होंगी लेकिन नहीं, वो सबसे अधिक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति था, वैफल्यग्रस्त, डिप्रेशन, कांस्टेंट दवाइयों के अंदर, डॉक्टरों के अंदर, दवाई के अंदर रहता था वो। और एक दिन उसमें उसके देहांत हो गया। ऐसे कितनी कहानी बता सकते हैं आपको, जो बताती है हमको बार बार, लेकिन हम उससे सीखते नहीं उनसे, कि अनंत प्रोविजन्स, दुनिया की वस्तु होने के बाद भी लोग यहाँ पर आनंद का, सुकून का, शांति का, संतुष्टि का अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए हम अभी उस दुनिया के बारे में बात करेंगे जहाँ गम भी नहीं है, आंसू भी नहीं है, और केवल प्रेम ही प्रेम पलता है, और वो है भगवान का धाम। क्योंकि तो भगवान के धाम में कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, और जन्म और मृत्यु भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर आप खुश भी होंगे, समझो आपके साथ सब लोग प्रेम करते हैं आपके ऊपर, तो क्या होता है, या तो आप चले जाते हो समय के प्रभाव से मृत्यु के रूप में, या तो आप पर जो प्रेम करते हैं वो चले जाते हैं। आप पर बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेमी संबंध है आपके, लेकिन समय आपको उस प्रेम संबंध को कंटिन्यू करने के लिए अलाउ नहीं करता, छोड़ के चले जाते। इसलिए ये दुनिया हमारा टेम्पररी घर है, परमानेंट घर नहीं है। परमानेंट निवास स्थान में प्रेम और आनंद का अनुभव प्राप्त होता है, ये सबसे हमको समझना जरूरी है। अगर वो हमारा निवास स्थान है तो हमें प्रेम और संतुष्टि का अनुभव होना चाहिए। और इस विश्व में हम किसी से भी प्रेम करेंगे तो समय उस प्रेम को तोड़ देता है, मृत्यु के कारण, मृत्यु के रूप में। इसलिए हमको वो जगह चाहिए जहाँ पर प्रेम है लेकिन मृत्यु नहीं होनी चाहिए, और वो केवल भगवान का धाम है। तो ये भगवान की भवानी दुनिया क्यों बनाई फिर, दुनिया बनाने वाले, हाँ क्यों बनाई दुनिया, कितने कविता लिखते हैं, लेकिन उत्तर पता नहीं ना उसका, इसलिए कविता लिखते हैं। जो शास्त्र पढ़ता है उसको पता है कि दुनिया क्यों बनाई है, गवर्नमेंट ने जेल क्यों बनाया है, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है हमारा एक रूल है, कायदा है हमारा, एक दंड विधान है, भारतीय दंड विधान, उसको तोड़ने वाले लोग भी होंगे, इसलिए उनको पता है कि कुछ लोग तोड़ेंगे तो उनको वहां रखेंगे, समाज को दूषित नहीं करेंगे वो। गवर्नमेंट कभी भी खुशी से जेल नहीं बनाती है, उनको बनाना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग अपने इंडिपेंडेंस का यूज़ करके वो नियम को तोड़ देते हैं, फिर उनको अलग रखना पड़ता है, दंड देके उनको पवित्र करना पड़ता है, फिर वापस लाना पड़ता है। उसी तरह से भगवान के धाम में भगवान का आधिपत्य है, और सब लोग भगवान के सेवक बन के रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं रहना हमको भगवान के साथ, क्यों भगवान भगवान बनते हैं, हमको नहीं भगवान बन सकते, भगवान ही मालिक क्यों, हमको नहीं मालिक बन सकते। तो भगवान किसी पर जबरदस्त नहीं करते, भगवान का एक बहुत अच्छा गुण है वो। भगवान कहते हैं, जैसे एक पिताजी अपने बालक को कहता है, देखो बेटा घर पे रहो, तुम्हारी सब सारी खुशियाँ इधर ही है, आप इधर ही रहो। लेकिन बच्चा कहता है नहीं रहना है मुझे यहाँ पर, मैं अपना बिजनेस करूँगा, मैं बूट पॉलिश करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा, मुझे अपना इंडिपेंडेंट राजा बन के रहना है, वो छोड़ के चला जाता है ना। वैसे ही हम लोग भी भगवान को छोड़कर, और भगवान फोर्स नहीं करते हैं, ठीक है अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम्हारे लिए एक अलग दुनिया है जहाँ पर तुम अपने मालिक बन के रह सकते हो। तो कितना अच्छा लगता सुन के ना, कि यहाँ तुम मालिक हो वहाँ मैं मालिक रहूँगा, और ये तो यहाँ मैं मालिक रहूँगा तुम नहीं मालिक रहोगे ये गलत फहमी सब लोग आ जाते हैं हम लोग, फिर वो दास्तान शुरू होती है सब, जन्म मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा, मन की तकलीफ, दूसरों से तकलीफ, प्रकृति की तकलीफ, तीन गुणों के द्वारा किए हुए कार्य, फिर उसके द्वारा किए हुए कार्य के फल, और फल में बद्धता, फल के द्वारा सुख या दुख। ये सिलसिला जो है ना, अनंत सिलसिला है, न ख़त्म होने वाला सिलसिला है। कर्मों का खेल कभी समाप्त होता ही रहता, लगता है समाप्त होगा ही नहीं कभी, अनलिमिटेड कर्मा इज गोइंग ऑन। और फिर भगवान ने इसके रूल बना के रखे हैं, यहाँ पर ज़्यादा समय टिकोगे नहीं आप, आना जाना यहाँ निरंतर कोई नहीं परमानेंट, कर ले राम भजन अर्जेंट। ऐसे ब्रज में गाते हैं लोग प्रेम से एकदम, कभी कभी मूड में आए तो। सब लोग यहाँ पर निरंतर आते जाते रहते हैं, कोई परमानेंट नहीं है। एक ही परमानेंट चीज़ है, भगवान का नाम और भगवान का भजन, जो भगवान के परमानेंट धाम में हमको पहुँचा देगा। बाकी सब कुछ ऐसे ही है, आज दिख रहा है तो कल नहीं दिख रहा है, आज काला दिख रहा है तो कल गोरा दिख रहा है, आज है तो कल नहीं है, यही सब खेल है यहाँ का। तो हमें ये सब ज्ञान प्राप्त करके सत्य के विषय में परिचय करवा के फिर यहाँ से निकलने का प्लान करना चाहिए। जैसे कभी कभी जेल में ना कोई गर्भवती स्त्री गुनाह करके एडमिट हो जाती है, जेल के अंदर भर्ती हो जाती है, और उसका डिलीवरी जेल के अंदर ही होता है, तो जो बच्चा पैदा हुआ है उसको लगता है ये मेरी मातृभूमि है, यही मेरा जन्म हुआ, यही बड़ा हो गया हूँ मैं, यहीं से मेरे को रोटी मिली है, यहाँ से मैं स्कूल गया हूँ, सब कुछ होता है। तो उस व्यक्ति को बताना पड़ेगा ना, नहीं तुम्हारी आने के पहले गर्भवती अवस्था में तुम्हारी माँ ने गुनाह किया था, वो पहले वो चिंचपोकले में रहती थी, अभी वो उधर करे रोड जेल में आ गई, और तुमको लगता है तुम्हारा वही घर है, तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर उधर है जहाँ पर अभी तुम्हारे दादाजी रहते हैं। तब उसको पता चलेगा ये मेरा घर नहीं है एक्चुअली, मुझे लगा यही मेरा घर है। तो कोई बताएगा ना उसको कि नहीं है तुम्हारा घर, वैसे शास्त्र बताते हैं हमको, साधु बताते हैं कि तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा दिल मत लगाओ, सब छोड़ के जाना पड़ेगा एक दिन, ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो। तो ये जब पता चलता है, जब मैंने शुरुआत कैसे की थी, अगर हमको ये ज्ञान होता है कि यहाँ जो कुछ चल रहा है वो संतुष्टजनक नहीं है, मुझे आनंद नहीं मिल रहा उसके अंदर, तो कहाँ मिलेगा आनंद। जैसे वो ढूंढ रहे थे कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं, मर जाना है मुझे, फिर गीत सुना तो ढूंढने चले गए तो मिला ना उसको आंसर। तो ढूंढने पर कहते हैं भगवान भी मिल जाते हैं, तो प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं मिलेगा। तो फिर हम लोग जब ये जैसे ही मन में ये जिजीविषा यानी क्या कहते हैं जिज्ञासा करते हैं कि सत्य क्या है, मैं कौन हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है, ऐसे जेन्युइनली हमको प्रश्न आता है ना, अंदर बैठे हुए भगवान जो है ना वो तुरंत उसका रास्ता बता देते हैं। जैसे उन्होंने आत्महत्या का प्लान कैंसिल किया और घर जाके चिंतन करने लगे, तो तुरंत अंदर के भगवान ने उनको राधा गोपीनाथ मंदिर पहुंचा दिया, और उन्होंने यही प्रश्न पूछा वहाँ पर, ऐसे क्यों दुनिया है क्या, तो पूरा विस्तार में वर्णन दिया गया उनका, ऐसे दुनिया है और कहाँ है सब कुछ बताया गया, कैसे पहुँचना है वहाँ पर। फिर जब शुरू हुआ, चार नियम पालन शुरू हुआ, सत्संग शुरू हुआ, और अभी तक वहाँ पर वो प्रेम की दुनिया में पहुँचे नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये सारे जीवन चरित्र जो जीवन का तरीका जो है ना, भक्तिमय जीवन का, साधना का जीवन है, उसके नियम पालन करने से ही आनंद का अनुभव शुरू हुआ। ये सबसे बढ़िया बात है एक्चुअली। जैसे हम लोग जो मेडिकल में थे ना, तो सेकेंड MBBS में हमको वार्ड में जाना शुरू कर दिया, तो स्टेथोस्कोप भी आ गया गले में, हाँ, तब से हमको लोग डॉक्टर पुकार रहे हैं, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, डॉक्टर बने नहीं अब तक, अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन सेकेंड MBBS से ही डॉक्टर की पदवी हमको मिल गई, ऐसे लोग पुकारने लगे। तो मतलब डॉक्टर न होते हुए डॉक्टर होने का जो एक आनंद है, गर्व है, जो भी कुछ है, उसका अनुभव सेकेंड MBBS से ही मिलने लगा। उसी तरह से डॉक्टर बनने के बाद में हम डॉक्टर करेंगे वो दूसरी बात है, लेकिन पहले से ही उसका आनंद अनुभव करने को मिल रहा है। वैसे ही ऐसे नहीं कि हम जब भगवान के धाम में पहुंचेंगे तो हमको पहला आनंद मिलेगा, तब तक तो यहाँ पर ठोकरे ही खाने, ऐसा नहीं है। जिस दिन हमने तय किया कि भगवान के धाम जाना है और इसका तरीका भगवान नाम लेना है, उसी समय से आपको आनंद मिलना आरंभ हो जाएगा, सारी परेशानियाँ, हाँ, निस्तेज चेहरा नष्ट हो जाएगा, चेहरे में तेज आएगा, रौनक आएगी, खुशी आएगी, उत्साह आएगा, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, पॉजिटिविटी आपके चेहरे में दिखने लगेगी। अरे पहले कितने मुरझाए लगते थे आप तो आज बार रौनक आ गए के चेहरे आप पर, ऐसा मार्ग है ये। एंड रिजल्ट प्राप्त होने की जरूरत नहीं है, उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए। तो ये भगवान का धाम है जहां पर भगवान रहते हैं, और भगवान के साथ में कौन रहता है, उनके जो प्रेमी भक्त है उनके साथ में रहते हैं और सदैव उनकी सेवा में रहते हैं, भगवान उनकी देखभाल करते हैं, भगवान उनको प्रेम देते हैं, वो भगवान को प्रेम देते हैं, उसमें कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई एनवी नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई चाहत नहीं है कि मुझे ये चाहिए, उनका पोजीशन मुझे चाहिए, सब लोग अपनी अपनी जगह पर खुश है। कोई ग्वाल बाल नहीं कहता कि मुझे गोपी बनना है, कोई गोपी नहीं कहता मुझे ग्वाल बाल बनना है, अलग अलग प्रकार के जीव हैं, कोई कंपटीशन नहीं कर रहा है, वो पास में भगवान के, मैं दूर हूँ, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। कभी आपने वृंदावन की कथा में पढ़ा है क्या कि गाय अपने मालिक को बोल रही है, ग्वाल बाल को, मुझे भी ग्वाल बाल बना दो, कितनी देर गाय बन के रहूँ मैं, मुझे आप जैसा ग्वाल बाल बनना है, या गोपी बननी है मुझे, या मोर आके बोल रहा है नंद बाबा को, कब तक मोर बना रहूँ, मेरा कभी प्रमोशन होगा नहीं, वो मोर के जगह पर प्रसन्न है वो जीव, कोई अपना पोजीशन बदलना नहीं चाहता। यहाँ पर हम लोग हर समय अपना पोजीशन बदलना चाहते हैं, कुछ बोर होता है हमको, एडवांसमेंट चाहिए, कुछ प्रमोशन चाहिए, कुछ इंक्रीमेंट चाहिए, ऐसा धाम है वो। और उस धाम के विषय में पूरी जानकारी इस जन्म में होते हुए प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। जितनी जानकारी प्राप्त करोगे उतने वहाँ जाने के लिए आप प्रयत्न करोगे, तड़पोगे, लालायित हो जाओगे, और प्रयत्न में भी आपको आनंद मिलेगा। अभी भगवान की कथा हम बैठ के यहाँ पर सुन रहे हैं, थोड़ी भगवान के धाम में बैठे हैं, हम लोग तो इधर बैठे हैं, इस शरीर में बैठे हुए हैं, जो बुढ़ापे होने वाला है, बुढ़ा होने वाला है, बीमार होने वाला, शरीर में बैठकर दुर्गंध आती है शरीर से, वो शरीर में बैठकर कथा सुन रहे हैं। लेकिन जब कथा सुन रहे हैं भगवान की, तो भगवान के निकट होने का अनुभव करते कि नहीं हम लोग? मुझे तो ऐसा अनुभव होता है, आपको पता नहीं, आपको पता होगा, क्योंकि वो कथा जो है भगवान की, वो साक्षात आपको भगवत धाम लेके जाती है। आप अपना अस्तित्व भूल जाते हो, भयभान मतलब भान ही भूल जाते हो कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, किधर हूँ, बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐसे रममाण हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। इतनी शक्ति है उस भगवान की कथा में, यहाँ रहते हुए उस धाम का अनुभव कर सकते हैं। फिर कथा समाप्त होगी, फिर दुनियादारी शुरू होती है, लेकिन वो कथा में जो मग्न रहता है वो तो हमेशा उधर ही रहता है, यहाँ पर रहते हुए भी वहाँ का आनंद करते रहते हैं, ये भी मुमकिन है। इसलिए मैंने कहा कि वहाँ पहुँचने की जरूरत नहीं उसका अनुभव करने के लिए, यहाँ पर भी उसका अनुभव आपको हो सकता है। ये भगवान की विशेष कृपा है। ये दुनिया में कैसा रहता है, प्रधानमंत्री होने का आनंद क्या है, ये प्रधानमंत्री होने के बाद ही आपको पता चलेगा, तब तक खाली आपको देखना है उनको। लेकिन भगवान के विषय में ऐसा नहीं है, भगवान के धाम में रहने का आनंद आपको यहाँ से आनंद शुरू हो जाएगा। तो वो धाम क्या है, उसके थोड़ा सा आपको मैं ज्योग्राफी बताता हूँ। एक है भौतिक दुनिया, एक है आध्यात्मिक दुनिया। ओरिजिनल क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ हम भी थे। और दूसरा है मटेरियल वर्ल्ड, उसमें अंतर क्या है, मटेरियल वर्ल्ड में जन्म और मृत्यु होती है, बुढ़ापा बीमारी होती है, वहाँ पर नहीं होता, ये बेसिक डिफरेंस है। एक कोना है कहते हैं, एक कोना, एक पूरे क्रिएशन में एक कोना है जिसमें एक बड़ा बादल है, जिसका नाम है महत तत्व। उस बादल की छाया में जितना दुनिया है वो मटेरियल वर्ल्ड है, वो बादल की छाया जो है अंधकार है। और भगवान के धाम में वो कहते हैं न शशांको न पावकः, वहाँ पर कोई बिजली की जरूरत नहीं है, ना बल्ब की जरूरत है, ना दीपक की जरूरत है, वो स्वयं प्रकाशित रहता है, भगवान के शरीर के आभा से चिरंतन प्रकाशित रहता है। यहाँ का दुनिया जो है वो अंधकार में रहता है, इसलिए यहाँ के दुनिया में सूरज और चांद की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है, बल्ब की, दीपक की आवश्यकता होती है, क्योंकि रूटीन सम टाइम के बाद में अंधेरा होता है, कुछ समय के बाद दिन के बाद अंधेरा होता है, और वो अंधेरा का ही दुनिया है, लेकिन सूरज आने पर वो उजाला दिखाई पड़ता है। लेकिन बेसिकली क्या है, जब सूरज जाता है तो वापस वो जो मूलभूत था वो आ जाता है, क्या, अंधकार। तो ये मटेरियल वर्ल्ड हो गया। उसके बीच में एक डिवीजन है, उसका नदी का नाम है विरजा नदी, वो ये डिवाइड करती है दोनों को। इसके उस तरफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड है स्वयं प्रकाशित, इस तरफ मटेरियल वर्ल्ड है अंधकार वाला। और वहाँ पर क्या है, अच्छा चलो पहले यहाँ बताता हूँ क्या है। यहाँ पर एक बड़ा सागर है जिसका नाम है कारण सागर, उसमें एक इंचार्ज है विष्णु भगवान, वो लेटे हुए हैं महानिद्रा में, और वो केवल स्मरण मात्र से, संकल्प मात्र से ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं। उनके शरीर के रोम रोम से एक एक विश्व निर्माण होता है बीज रूप में, फिर बाद में वो विकसित होता है और डेवलप होकर ब्रह्मांड बनता है। अभी ऐसे कितने हमारे शरीर में पता है, कितने होल्स हैं, 3.5 करोड़ अराउंड, ज़्यादा कम हो सकते हैं लेकिन इस मात्रा में है, 3.5 करोड़ इसमें रोम है शरीर में। वो तो हमारे शरीर में है, विष्णु के शरीर में कितने होंगे। उस हर एक में से एक ब्रह्मांड निकलता है बीज रूप में, तो कितने अनंत कोटि ब्रह्मांड निर्माण होते हैं। वो सब अपने अपने जगह स्थान लेते हैं, फिर अभी आप एक यूनिट लीजिए उसमें से, एक यूनिट ले लिया एक ब्रह्मांड में, उसमें वही विष्णु अपना एक रूप डाल देते हैं, गर्भ उदक शाही विष्णु, तो कितने गर्भोदोषाय विष्णु हो गए? अनंत हो गए ना, क्योंकि एक के रूपांतर रूप के विस्तार में एक एक ब्रह्मांड में योगुक बैठे हुए हैं, उनके नाभि से कमल निकलता है, वो ब्रह्मा लोक है, ब्रह्मा जी का जन्म होता है, फिर ब्रह्मा जी बाकी लोक निर्माण करते हैं, एक यूनिट हो गया यूनिट। हाँ, तो वो यूनिट कैसा है? सात ऊपर के लोग हैं, लोक स्वर्ग लोक, ब्रह्मा लोक, जन्म लोक, तपलोक, सिद्ध लोक, हाँ, और बीच में पृथ्वी लोक, और नीचे छह नीचे के लोक, उसको अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, कुंभीपाक, ऐसे सब बहुत सारे हैं, छह है, छह मेन, और उसके नीचे 27 नरक हैं, वो गवर्नमेंट बनाते हैं जेल, वैसे ही 27 नरक है अलग अलग लोगों के लिए दंड देने के लिए, और यहाँ पर हम लोग अभी जी रहे हैं बीच में पृथ्वी लोक में, कोई पुण्य करते तो स्वर्ग जाते हैं, पुण्य खत्म होता है तो नीचे आ जाते हैं, कोई पाप करते तो नीचे चले जाते हैं, पाप भोगने के लिए, पाप समाप्त हो गए तो फिर पृथ्वी पर आ जाते हैं, ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, मेरी गो राउंड, और बहुत घूमे बहुत बार तो सोचते हैं क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, हाउ टू गेट आउट, तो फिर साधु को मिलते हैं, फिर भजन शुरू करते हैं, फिर बाहर निकलने का रास्ता शुरू हो जाता है। ये यहाँ की दुनिया का एक स्ट्रक्चर है। वहाँ की दुनिया में क्या है? वहाँ की दुनिया में भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति, वो ब्लू रंग का होता है। मैं हमेशा बताता हूँ कि आकाश में देखते ही ब्लू रंग क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के शरीर से निकले हुए लाइट का प्रतिबिंब है, इसलिए किधर भी देखो तो ब्लू ही दिखाई पड़ता है। अमेरिका जाओ, इंडिया जाओ, कानपुर जाओ, वृंदावन जाओ, सब जगह ब्लू ही ब्लू है। तो वो ब्रह्म ज्योति सब जगह छाई हुई है, और उसके बीच में अनंत वैकुंठ लोक हैं जो भगवान ने निर्माण किए हैं, और हर एक वैकुंठ में एक एक विष्णु उसका नियंत्रण करते हैं। हर विष्णु अलग है, उनकी चार भुजा है ना, तो चार भुजा में शंख, चक्र, पद्म, गदा है, उसका कॉम्बिनेशन होता है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उससे वो अलग अलग विष्णु निर्माण होते हैं। समझो, अब ये हाथ में, पीछे वाले ये हाथ में अगर शंख है तो बाकी तीन जो है वो चेंज हो सकते हैं, तो अनेक परमुटेशन कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएंगे, उतने विष्णु तैयार हो जाएंगे। फिर आप इस शंख को सामने वाले हाथ में पकड़िए और बाकी तीन चेंज करते रहिए तो दूसरे विष्णु निर्माण हो जाएंगे। ऐसे अनंत विष्णु हैं, और एक एक विष्णु के अलग अलग नाम हैं, और एक एक वैकुंठ को नियंत्रण करते हैं। उसके आगे जाएंगे वैकुंठों को पार करके तो बीच में एक एरिया आती है, बहुत स्पेशलाइज्ड एरिया है, उसके अंदर द्वारका, अयोध्या और मथुरा, स्पेशलाइज्ड वैकुंठ है वो, बाकी सब वैकुंठ है। वैकुंठ का मतलब क्या है? वहाँ कुंठ, कुंठ यानी कष्ट जो है ना वो नहीं हो रहा है, वहाँ कोई कुंठित नहीं है। कुंठित का मतलब क्या है? सहमे हुए, सिकुड़े हुए, दुख में, दर्द में तड़पते हुए लोग रहते नहीं वहाँ पर, वो सब दर्द जो है कुंठित होने का वो सब समाप्त है वहाँ पर। वही कुंठ उसके परे है वो, सबसे पहले जन्म मृत्यु नहीं है, उसके बाद में आनंद है। उसका स्पेशलाइज आगे जाके द्वारका, फिर अयोध्या, वहाँ प्रभु रामचंद्र निवास करते हैं, फिर आगे मथुरा, और उसके आगे एक जगह है जिसका नाम है गौलोक वृंदावन, वो सबसे हाईली स्पेशलाइज्ड एंड टॉप मोस्ट लोक है, सबसे ऊपर वो गौलोक वृंदावन है, वहाँ पर राधा और कृष्ण निवास करते हैं। राधा और कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है? विष्णु जो है वो ऐश्वर्य संपन्न है, वहाँ पर सब लोग दिन रात पुरुष सूक्त ब्रह्म संहिता ऐसे सब श्लोक गाते रहते हैं उनकी स्तुति में, और सब लोग उनकी खाली सेवा करते रहते हैं, और कोई रिश्ता नहीं है, मालिक और सेवक बस इतने रिश्ते रहते हैं। बट गोलोक वृंदावन में ऐसा नहीं है, गोलोक वृंदावन में कुछ माँ, भगवान की माँ भी है, भगवान के पिताजी भी है, वहाँ पर गाय भी है, वहाँ पर मोर भी है, वहाँ पर सब लोग हैं, हर प्रकार के लोग हैं, दोस्त भी है, गोपियाँ भी हैं, राधा रानी भी है, हर प्रकार के संबंध है वहाँ पर। और एक विशेषता है, वहाँ पर कोई भगवान को भगवान के रूप में जानता ही नहीं है, वैकुंठ में सब लोग वैकुंठाधिपति विष्णु को भगवान के रूप में जानते हैं। बहुत डिटेल अरेंजमेंट है ये, यहाँ पर इतनी अरेंजमेंट नहीं है, वहाँ पर उतनी अरेंजमेंट है। यहाँ पर हमको जितना समझ में आता है गवर्नमेंट का पॉलिसीज, उससे बहुत महीन तरीके से, सुपर फाइन तरीके से वहाँ का मैनेजमेंट चलता है। ऐसे ऐसे हायरार्की है, आप हैरान हो जाएंगे देखकर, कुछ लीला करने की हायरार्की है, कुछ मैनेजमेंट की हायरार्की है। वही व्यक्ति दो रूप में काम करता है, कभी लीला में काम करता है, कभी मैनेजमेंट में काम करता है। जैसे बलराम जी भगवान के प्रथम लीला अवतार हैं, लेकिन अपना एक रूप विस्तारित कर देते हैं संकर्षण के रूप में, वो सारा मैनेजमेंट संभालते हैं, और बलराम के रूप में भगवान की लीला में सहायता करते हैं। तो वो जो गौलोक वृंदावन है ना, उसके भी कथा बताता हूँ आपको मैं। नीचे अभी पूरे ब्रह्मांड अनंत तैयार हो गए हैं। कौन रहते हैं वहाँ पर? जो लोगों ने भगवान को छोड़ दिया है वो सब लोगों को वहाँ ट्रांसफ़र होती है, वहाँ क्वार्टर मिलते हैं उनको और वहाँ पर जन्म मृत्यु में तड़पते रहते हैं। तो उधर राक्षस भी आते हैं, संत लोग भी आते हैं, भगवान के भक्त भी आते हैं, मतलब भक्त बनते हैं। और जेल में कभी कभी क्या होता है ना, वो बहुत लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं जेल में कभी कभी। क्यों, क्या करने के लिए आते हैं? वो जेलर लोगों को प्रचार करने के लिए, सुधारने के लिए हमको बुलाते हैं लोग। बहुत हमारे डिवोटी ब्रह्मचारी गृहस्थ कई जेल में जाते हैं और वहाँ पर उनके क्लासेस लेते हैं, उनके जप करवाते हैं, उनका मति शुद्ध करने का प्रयास करते हैं ताकि गुनहगारी की प्रवृत्ति नष्ट हो। तो वैसे ही भगवान अपने धाम से वहाँ पर बहुत लोगों को भेजते रहते हैं, नारद मुनि, व्यास मुनि, सुखदेव जी, ऐसे बहुत लोगों को भेजते रहते हैं ताकि जो मुझको छोड़ कर गए हैं उनको कुछ बोध दिया जाए, है ना। बच्चा ने मेरा घर छोड़ के अभी दादर स्टेशन पे रहने का तय किया है, वहाँ पर बूट पॉलिश करता है वो, तो पिताजी क्या करते हैं कि चाचा को भेज देते हैं, दोस्त को भेज देते हैं, किसी परिवार के आदमी को भेज देते हैं कि भाई समझा उसको, ये बूट पॉलिश करना बंद कर दे, घर में आके अच्छी तरह से मिठाई रोटी खा ले फर्स्ट क्लास आनंद से, सब प्रॉपर्टी तुम्हारी है, कोई बूट पॉलिश की जरूरत नहीं है। तो क्या उद्देश्य है उसका कि मेरा बेटा मुझसे अलग होकर कितना कष्ट पा रहा है, तो जाओ समझा लो उसको। नहीं समझता है तो एक दिन पिताजी खुद जाते हैं स्टेशन पे, बोले बेटा क्यों वहाँ पर तड़प रहे हो, चलो मम्मी ने आज पराठे बनाए हैं तुम्हारे पसंद वाले, सुबह से इंतजार कर रही है, चलो सब छोड़ के ये छोड़ दो बूट पॉलिश सामान कब, यहाँ पर पूरा बंगला तुम्हारा है, कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं है। वैसे भगवान करते हैं, संतों को भेजते हैं, अपने अवतारों को भेजते हैं और एकदम खुद भी आ जाते हैं और यहाँ पर अपना डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। तो वैसे एक बार पृथ्वी पर बहुत आतंक हो गया राक्षस का, कई बार होता है। तो पृथ्वी जो है वो गौ माता बनकर ब्रह्मा जी के पास जाती है कंप्लेंट लेके, क्या कहते हैं उसको, निवेदन लेके जाती है। तो ब्रह्मा जी का अपना नियम है, जब भी पृथ्वी आती है तो वो सबको लेकर जाते हैं एक विष्णु के पास, जिसका नाम है क्षीरोदकशायी विष्णु, जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। ये भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट है। हाँ, वो जो विष्णु है ना, कारण सागर विष्णु, वो हो गए गर्भोदकशायी विष्णु एक ब्रह्मांड के अंदर। फिर उन्होंने सब ब्रह्मांड का निर्माण किया, 14 लोक बनाए, ब्रह्मा को बनाया। फिर वही विष्णु एक और एक लोकल वैकुंठ निर्माण करते हैं ब्रह्मांड के अंदर, उसका नाम है क्षीर सागर। उसको क्या के नाम क्या है उसका वैकुंठ का? हाँ, नहीं नहीं वैकुंठ का नाम क्या है उसका? श्वेतद्वीप, सॉरी, वो एक लोकल वैकुंठ है। वहाँ पर वो विष्णु जो है गर्भोदकशायी विष्णु, वो क्षीर उदकशायी विष्णु के रूप में विराजमान होते हैं। यानी वहाँ पर दूध का सागर है, क्षीर उदक। क्षीर का मतलब क्या है? दूध, यानी सागर, उसका दूध का सागर है एक, वहाँ पर विष्णु विराजमान रहते हैं। और वो जो विष्णु है वो जितने भी जीव यहाँ पर निर्माण हो गए, आ गए हैं, मतलब यहाँ पर उन्हें ट्रांसफर हो गया है, उनके हृदय में जाकर परमात्मा के रूप में बस जाते हैं। क्यों बस जाते हैं? ताकि कभी दिमाग सुधर गया इसका तो मैं गाइड करूँगा उसको कहाँ जाना है, और देख रहे भी रखते कहाँ कर रहा है क्या कर रहे हैं, अंदर से बताते रहते हैं मत करो इसको, दारू मत पियो, अच्छा नहीं है शरीर के लिए। हर व्यक्ति जब पाप करता है ना तो अंदर से उसको आवाज़ सुनाई देती है, मत करो इसको। कभी भी देखो, आप खुद को जांच के देखो, कुछ गलत काम करने जाते हैं अंदर से जोर से आवाज़ आती है, मत करो, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। और कभी कभी दूसरे लोग भी आके बताते हैं बेटा मत करो ऐसे, वो भी उसका ही प्रतिनिधि है, भगवान का ही प्रतिनिधि है, वो आपको गाइड करने के लिए आ रहा है कि डोंट डू इट, कॉशन करने के लिए आ रहा है। फिर भी वो व्यक्ति करता है, फिर उसका फल भोगता है। तो फिर ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर, पृथ्वी को लेकर वो क्षीर सागर के किनारे में आते हैं और भगवान अंदर है शेषनाग पर लेटे हुए, और यहाँ से ब्रह्मा जी के स्पेशल कोड लैंग्वेज में निवेदन किया जाता है। जैसे यहाँ से हम ईमेल भेजते हैं ना, वे टेक्नोलॉजी है ना, वो सरप्राइजिंग टेक्नोलॉजी है। यहाँ कुछ लिख रहे हैं, अमेरिका में लोग पढ़ रहे हैं उसको, जादू, एक तरह जादू है वो। पहले नहीं था ऐसे, पहले खत भेजो, पोस्ट बॉक्स में डालो, 15-20 दिन 30 दिन तक चल रहा है वो, फिर अमेरिका पहुँच रहा है प्रभुपाद के समय पर, फिर वहाँ से खत लिख रहे हैं, उसका एक महीने के बाद उत्तर पहुँच रहा है। अभी कैसे, यहाँ पर कुछ टाइप किया सीधे अमेरिका में उसी समय पढ़ रहा है वो, खाली सेंड करने की जरूरत है बस। वैसे ही एक अजीब दिव्य तरीका है जिसके द्वारा ब्रह्मा जी उस क्षीरोदक शाही विष्णु से कांटेक्ट करते हैं और मैसेज भेजते हैं कि ये समस्या ऐसी ऐसी है। तो वो क्या करते हैं, वो भी वहाँ से एक मैसेज भेज देते हैं रिप्लाई में, डोंट वरी मैं आ रहा हूँ, आप सब लोग अपना ना पोजिशन ले लो, मैं अभी आ ही रहा हूँ, उन राक्षसों का वध करूँगा, सब शांति पैदा करूँगा। लेकिन इस बार क्या हुआ, उस एक बार क्या हुआ, वो मैसेज भेजने के बदले में खुद ही वहाँ से किनारे पे आ गए। हमेशा ऐसा नहीं होता है, रूटीन क्या है उनका, प्रोटोकॉल, आप प्रार्थना भेजो, मैं उसका कोडेड मैसेज भेजूंगा, वो ब्रह्मा के हृदय में आएगा और ब्रह्मा जी उसको डिकोड करेंगे और सब देवताओं को बताएंगे कि ये ऐसा ऐसा है, आपको ये उपाय होगा, आपको ये करना है, फिर आपको भगवान आके सब सॉल्यूशन दे देंगे। इस बार वो खुद आए और खुद आके दर्शन दिया उन्होंने, जो भी बहुत दुर्लभ है उनका, और कहा कि चलो मेरे साथ। तो अभी क्या सीन है, गाय बनी हुई पृथ्वी, सारे देवता, ब्रह्मा और वो क्षीर उदक शाही विष्णु जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप बैठे हुए हैं, वो सब अभी यात्रा कर रहे हैं ऊपर की ओर, ब्रह्मांड को पार करके, कारण सागर को पार करके, विरजा नदी को पार करके, ब्रह्म ज्योति को पार करके, ब्रह्म वैकुंठों को पार करके, द्वारका, अयोध्या, मथुरा पार करके सीधे पहुंचे कहां पर, गौलोक वृंदावन में पहुंचे। और गौलोक वृंदावन में श्री हरि का दर्शन हुआ, मतलब श्री कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ। तो जाते ही ये विष्णु ने ये सबको इंट्रोड्यूस कराया, देखो ये ऐसे ऐसे ब्रह्मांड से आए हुए हैं, ये वैसे ब्रह्मांड की पृथ्वी देवी है, ये गौमाता बनी हुई है, यहाँ पर ये कष्ट हो रहा है, तो अभी मैं आपको निवेदन देता हूँ इनके प्रति। तो कुछ वार्तालाप हुआ और सबके आंखों के सामने वो विष्णु जो थे आए थे ना नीचे से, वो श्री हरि के शरीर में विलीन हो गए, सब लोग देखते रह गए। उतने में और कुछ सोच ही रहे थे तो उतने में प्रभु रामचंद्र अपने तीन भाइयों के साथ, वानर सेना के साथ में वहाँ सुग्रीव सबको लेकर प्रकट हुए और सब लोग वो श्री हरि के अंदर विलीन हो गए। फिर नरसिम्ह भगवान उनकी लक्ष्मी के साथ, प्रहलाद के साथ में आए, बड़े ही इत्मीनान से उनके साथ में विलीन हो गए। फिर वामन देव आए, यज्ञ पुरुष आए, बहुत सारा लंबा वर्णन है, जितने भगवान के अवतारों का वर्णन दिया है वो सारे वहाँ प्रकट सबके आंखों के सामने हो गए और सब श्री हरि में विलीन हो गए। ये सीन कुछ देर चलता रहा और नीचे से आए लोग देखते रह गए, क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर सब कुछ आने जाने का काम खत्म हो गया, सब लोग विलीन हो गए, फिर हरि ने बोलना शुरू किया। तो हरि ने क्या कहा, डोंट वरी, सबसे पहला भगवान क्या कहते हैं, माँ शुचः, चिंता मत करो, आप सही जगह पर आए हो, अभी आपका काम होगा, कैसे होगा बताता हूँ। सब लोगों को आदेश दिया, तुम इस वंश में जन्म लो, तुम इस वंश में जन्म लो, तुम इस वंश में जन्म लो, सब लोग अपना अपना पोजीशन ले लो, फिर मैं जन्म लेता हूँ, मैं आऊँगा, जन्म लूँगा और तुम्हारे को जितने जितने राक्षसों ने कष्ट दिया है वो सबका संहार कर दूंगा। पृथ्वी को कष्ट क्या था, पृथ्वी को ना धारा इति इति धरा, यानी धारण करने की अमाप शक्ति पृथ्वी पर होती है, पृथ्वी में ना? तो पृथ्वी को दो चीज़ का भार सहन नहीं होता है, पता है आपको, कौन, एक होता है झूठ, असत्य और पाप, दो चीज़ का भार उनको, जिनको अनंत धारण करने की शक्ति है उनको ये धारण करने की शक्ति नहीं है, पाप और असत्य। जब पाप असत्य बढ़ जाता है ना तो असह्य हो जाती है, वो इम्पॉसिबल, फिर वो जाती है निवेदन देने के लिए। तो भगवान ने कहा कि मैं आऊँगा और तुम्हारा असत्य और पाप का भार जो है वो नष्ट कर दूंगा और तुमको आनंद से रखूंगा मैं। ये सब जब हो रहा था ना सब कुछ, सभी वहां पर राधा रानी भी खड़ी है उनके बाजू में, और जब भगवान बोलते हैं मैं आऊंगा तब वो बेहोश हो गई। तो उनको समझ में नहीं आया कि मैं इतना अच्छा वर्णन कर रहा हूँ, इतना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, उपाय बता रहा हूँ, तो राधा रानी बेहोश क्यों हो गई। तो उस समय सभी सखियों ने उनको जगाया, होश में लाया और भगवान ने पूछा क्या हुआ प्रिय, आप बेहोश क्यों हो गई। तूने कहा, आप ही ने तो कहा ना कि आप जाएंगे। तो भगवान ने कहा, मैंने कब कहा मैं अकेला जाऊँगा आपको लेकर जाऊँगा। तो राधा रानी कहते, आपको कैसा लगा कि मैं आऊँगी, हाउ यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि आई विल कम, क्यों आप क्यों नहीं आएंगे साथ में मेरे। तो यत्र वृंदावनो नास्ति यत्र गोवर्धन नास्ति, हाँ जहाँ पर वृंदावन नहीं है वहाँ पर गोवर्धन नहीं है, वहाँ पर जमुना नहीं है, तत्र में न सुखा, मुझे कोई सुखी नहीं है वहाँ पर, मैं कभी नहीं आ सकती वहाँ पर। तो भगवान कहते हैं मैं जानता हूँ इस बात को, तुम्हारे मन के अंदर क्या बात है, तुम्हारे मन के अंदर की बात जानकर मैंने गौलोक वृंदावन का एक हिस्सा, पूरा गोवर्धन और पूरी यमुना ऑलरेडी उस लोक में भेज दिए है, ऑलरेडी वो अपना पोजिशन ले चुके हैं। तो कहते फिर मैं आऊंगी, आई विल कम। इस तरह से वो जो गौलोक वृंदावन है वो इस पृथ्वी तल पर स्थापित हो गया। तो हम लोग जिस वृंदावन की बात करते ना, वो उससे अलग नहीं है। डिवाइन लाइफ होता ना, डिवाइन लाइफ यानी आध्यात्मिक जीवन और हमारा आज का जीवन, इसमें ये अंतर है। अभी आप मलाड से आए ना, अभी आप कहाँ से आए? मलाड से, अंधेरी से आए। अंधेरी का घर यहाँ पर लेके आए क्या आप साथ में? आप यही रहते हैं, आपका घर ही इधर है, भाग्यवान जीव है। मैं मीरा रोड से आया हूँ, मेरा मीरा रोड में घर है, थोड़ी मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, महावन में कमरा दिया वहाँ पर रहता हूँ। तो यहाँ पर हम स्थावर जो है उसको उठाकर लेके जा सकते नहीं है, दूसरा कमरा रेंट पे ले सकते हैं। माता जी मीरा रोड से अपना घर लेके आए क्या सर्विस्टा से? नहीं ना, हाँ वो भी यहाँ पर दूसरे कमरे में रहती है, उधर तो एक अलग कमरा है हमारी बिल्डिंग के बाजू में। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपना स्थावर प्रॉपर्टी जो है, क्या कहते हैं उसको, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको लेकर कहीं आ सकता नहीं है। लेकिन भगवान के धाम में भगवान धाम को भी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी, अगर आपको ये विषय समझना है, डिवाइन लाइफ समझना है, तो ये सब सत्य है वहाँ पर। अरे इधर भी भगवान ने एक दिन क्या क्या पता है आपको, वो जरासंध ने आक्रमण किया ना, 17 बार आक्रमण किया और 18वीं बार आक्रमण करने वाला है। तो मथुरावासी परेशान हो गए, क्योंकि वो घर के बाहर ही युद्ध होता था, हाँ घर के आंगन में रोड पे गली में युद्ध हो रहा है, कैसे आप शांत रह सकते हैं? आप समझो घर के खिड़की के बाहर कोई बॉम्ब फोड़ रहा है, गोलीबारी हो रही है, तो यू कैन नॉट से पीसफुली एट होम, अपने को क्या करना है, दरवाजा बंद करो सो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। वो आवाज़ ऐसी है कि आपको रात भर नींद नहीं देगी उससे। तो मथुरावासी ने कहा भगवान ये कितनी बार हमारे घर के बाहर युद्ध करोगे आप, ये रहने की जगह है, इस रेसिडेंशियल प्लेस, वॉर जोन नहीं है ये। तो भगवान ने देखा बहुत बार, 16 बार हो गया, अभी बहुत परेशानी तो बात सत है। विश्वकर्मा को बुलाया, आ जाओ इधर, अभी जाओ पश्चिम किनारे जाओ समुद्र के, अरबी समुद्र में, समुद्र को बोलो पीछे चले जाओ, जगह बनाओ समुद्र में, उसको बोलते रेक्लेमेशन, हाँ जाके मेरे अथॉरिटी पे समुद्र को बोलो पीछे हटो, जगह दो मुझे, और वहाँ पर उस जगह पे तुम एक द्वारका नगरी तैयार करो। वो भी कैसे, 8 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, तो ये एक रात में होना चाहिए, ये भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है, हमारे पास नहीं होता है। हमारा प्रोजेक्ट तो क्या है, बताते कुछ है, होता कुछ और है, 18 महीने में हो जाएगा, तो 36 महीने में भी होता नहीं है। कई परेशानी होती है। विश्वकर्मा ने द्वारका के समुद्र को पीछे करके जो लैंड एक्वायर किया उसमें ओवरनाइट भगवान की इच्छा के अनुसार द्वारका नगरी खड़ा कर दिया। लोग सब मथुरा में उस रात को सोए, सुबह उठे द्वारका में उठे, कितना अच्छा है ना। पैकर्स मूवर्स कुछ है ही नहीं उसके अंदर, सारे सामान के साथ नए घर में उठे वो, सब बिस्तर सब लगे हुए हैं, सब किचन लगा हुआ है, भंडार भरे हुए हैं, सब कुछ ऑर्नामेंट घर सब फर्नीचर सब लगा हुआ है। मथुरा में सोए और द्वारका में उठे, बोलो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का आनंद है। तो वैसे उन्होंने वहां से धाम जो है पृथ्वी पर भेज दिया। आज पृथ्वी पर वृंदावन जमुना गोवर्धन क्यों है, क्योंकि राधा रानी ने कहा था कि मैं नहीं रह सकती उसके बिना, तो भगवान ने उसी को यहां पर शिफ्ट कर दिया है। और वो वहां से अभिन्न है, जो दिव्यत्व वहां पर है वो यहां पर भी है, वहां पर भी भगवान भगवान के रूप में उनको जानते नहीं कोई, यहां पर भी जब भगवान आते हैं, अभी जन्म लिया ना उन्होंने, जन्म लिया और जन्म लेने का एक बहाना होता है, देवकी के गर्भ से, यशोदा के गर्भ से, ऐसे एक मेथड होता है, वो सब प्रोटोकॉल। कौशल्या से गर्भ से आए तो राम बनकर आते हैं, अदिति के गर्भ से आए तो उपेंद्र वामन बनकर आते हैं, ऐसे अलग अलग उनके तरीके हैं। तो वैसे आए वो, लेकिन यहाँ पर भी वृंदावन धाम में उनको कोई भगवान के रूप में पहचानता नहीं है, ये बड़ी विशेष बात है। और यहाँ पर और भी धाम है पृथ्वी पर, द्वारका है, मथुरा है, श्री रंगनाथ क्षेत्र है, रंग क्षेत्र, श्री रंगम है, उधर जगन्नाथपुरी है, ऊपर बद्रीनाथ है, अयोध्या है, बहुत प्रकार के सिंगाचलम है, हाँ अहोबिलम है, आप भारत में तो होलसेल में होली धाम है। लेकिन सब जगह पर भगवान को भगवान के रूप में जानते हैं। नरसिंह भगवान भगवान है सबको पता है, प्रभु रामचंद्र भगवान है सबको पता है, द्वारकाधीश भगवान है सबको पता है, रंगनाथ भगवान भगवान है सब पता है, जगन्नाथ जी भगवान है सब पता है, लेकिन वृंदावन में कोई भगवान को जानता नहीं, इसलिए वो सर्वोच्च धाम है। ये वृंदावन की पहचान क्या है, उसके तीन मूलभूत अंग है, एक वृंदावन की भूमि, एक यमुना जी और एक गोवर्धन। ये तीन के बिना वृंदावन अधूरा है, एक भी नहीं होगा तो वृंदावन को वृंदावन नहीं कह सकते आप। और तीनों वस्तुएं इतनी पावरफुल है कि उनका संपर्क होते ही हम दिव्यता का अनुभव आरंभ कर देते हैं, और तीनों के सानिध्य में रहेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन भगवत धाम जाएंगे, यहाँ से सीधे ट्रांसफर हो जाएंगे जहाँ से वो धाम आया है, मूल ओरिजिनल धाम में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है फिर गोवर्धन इको विलेज में, उसकी प्रतिकृति है, रेप्लिका है, लेकिन रेप्लिका और ओरिजिनल में कभी फर्क नहीं होता है, केवल भाव की कमी है बस। और वृंदावन में जाएंगे आप साक्षात वृंदावन जाएंगे और भाव नहीं आपका, क्या है इधर कोई भगवान, कोई किधर है भगवान, कुछ है ही नहीं, नदी बह रही है वो सब जगह होती है, इधर भी नदी बह रही है उसमें क्या बड़ी बात है, तो वहां पर भी भाव नहीं होगा तो वृंदावन वृंदावन के रूप में आपके सामने प्रकट नहीं होगा, आपको लगेगा गटर है, कीचड़ है, डुक्कर है, सब जानवर यहाँ पर पड़े हुए हैं, ऐसा लगेगा ऑर्डिनरी सब जगह गाँव में होता है, सब यहाँ पर ऐसा ही है, डिफरेंस क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको भाव उत्पन्न होता है तो भगवान अपने धाम को प्रकट कर लेते हैं, क्योंकि भगवान अपने आपके भाव के गुलाम नहीं है, आपका भाव कह रहा है कि हमको बिलीफ, हम लोग श्रद्धा नहीं रखते इस बात पर, तो भगवान कोई कठपुतली नहीं है कि आप फिर भी आपको धाम दिखाते रहे, क्या जरूरत है भगवान को दिखाने की, आपको श्रद्धा नहीं है तो। अगर आपको लगता नहीं कि मैं आपको कुछ दान दे के मदद कर सकता हूँ, आपकी श्रद्धा ही नहीं है तो मैं क्यों दान दूंगा, मेरी कैपेसिटी है देने की, लेकिन आपको श्रद्धा नहीं है तो मैं क्यों दूंगा उसको। अगर आप श्रद्धा रखते हैं और नम्रता से निवेदन करते हैं तो मैं कुछ आपको मदद कर सकता हूँ, मेरे में कैपेसिटी है, लेकिन श्रद्धा की आवश्यकता है कि नहीं, आप पहले आके बोलेंगे ये क्या देंगे मुझे, तो मैं देने वाला भी नहीं दूंगा क्योंकि सब कुछ भाव पे डिपेंड है। तो भगवान के धाम में भी जाएंगे आप और वहाँ बोलेंगे कि आई डोंट बिलीव, ये सब जगह पर्वत होते हैं, ये भी पर्वत है, थोड़ा डिफरेंट है, क्या है इसमें, क्या गोवर्धन, क्या साक्षात भगवान, कुछ नहीं है, तो वो सब कुछ पत्थर बन जाएगा आपके लिए। यहाँ तक कि आप मंदिर में जाएंगे ना यहाँ पर और बोलेंगे क्या मदन मोहन, क्या वृंदावन बिहारी, क्या श्री गौरांगा, क्या अलग अलग नाम दे के रखे हैं, सब पत्थर तो पत्थर ही है, सब अलग अलग शेप देके अलग नाम देके रखा है, कोई खिलौना है बच्चों का, ये सब ये कोई भगवान वगवान कुछ है ही नहीं, तो आपके लिए पत्थर ही बने रहेंगे। बोले एक शेप का पत्थर है, एक शेप का पत्थर है, ये दूसरा शेप का पत्थर है, ये काला है, गोरा है, लेकिन अगर आप समझेंगे कि ये साक्षात भगवान है, प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तो आपको वो भगवान के रूप में प्रकट हो जाएंगे आपके लिए, आपके साथ वार्तालाप करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा आपको, रोज अलग दिखेंगे आपको, ये सब भाव के कारण है। ये तो आप लोग यहाँ पर क्यों घेवे वस्त्र पहन के आने की जरूरत क्या है, वैसे ही भूमि है सब जगह पर, यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पर भूमि है, यहाँ पर कमरे हैं, यहाँ पर बिल्डिंग है, रहने की जगह किचन है, सब कुछ है, बीच में एक मिलने की जगह है, क्या है इधर, कुछ है ही नहीं, अपना घर ही अच्छा है उससे, लेकिन आपके अंदर वो भाव है इसलिए आपने सब कुछ छोड़ के आप यहाँ पर सेवा करने आ गए, और उस भाव ने आपका पूरा जीवन बदल दिया है कि नहीं दिया है बताओ, आपने अपना हेयर स्टाइल भी बदल दिया है फिर भी खुश है, नहीं तो बाहर तो कभी कोई पिताजी गुजर गए, बाल कटवा दिए तो 3 महीने टोपी पहनते हैं कि किसी को पता नहीं चले कि हमने बाल क्यों काटे, और बाल काट के हम खराब दिखते हैं तो लोगों को अच्छा लगता नहीं, और यहाँ पर हम लोग खुलेआम सर मुंडवा के घूमते रहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि धाम भी है तो भाव की वजह से है, तो धाम नहीं है अगर भाव नहीं है, ना द्वारका है, ना जगन्नाथपुरी है, ना श्रीरंगम है, ना वृंदावन, ना अयोध्या, कुछ भी नहीं, सब कुछ सेम है। तो ये जो बनाया यहाँ पर है वो इसलिए है कि जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं किसी कारण, अनेक कारण है, उनके लिए यहाँ पर एक नज़दीक अनुभव है ताकि आपको पता चले कि वहाँ पर कैसे होगा। यहाँ पर 15 मिनट में गोवर्धन परिक्रमा होती है, वहाँ पर 6 घंटे मिनिमम लगते हैं, कभी 10 घंटे भी लग सकते हैं, उसकी झलक यहाँ पर दी गई है। और झलक जो होती है वो भी वास्तविक होती है, वो झूठ मूठ की बनी बनाई नहीं होती है, वो एक्चुअल होती है। भगवान का नाम आप अपने घर में बैठ के लो, या यमुना किनारे बैठ के लो, या गोवर्धन के तलेटी में बैठ के लो, या दिल्ली में बैठ के लो, आपको अनुभव तो वही आएगा भगवान के नाम का, क्योंकि भगवान का नाम एब्सोल्यूट है ना। लेकिन यहाँ आने से हमारी श्रद्धा है ना इसकी जगह के ऊपर, इससे ज़्यादा अनुभव होता है। और वही श्रद्धा आप घर में बैठ के करेंगे तो घर में भी आपको वही अनुभव आएगा। ये मत समझना कि घर में आपको वो नहीं आएगा अनुभव, वो वहाँ पर आता है। ये हमारे मन के एडजस्टमेंट का एक तरीका ही है। हम सोचते हैं अपना घर है, बेडरूम है, सोने की जगह है, और यहाँ पर सोचते हैं कि हरे वृंदावन है, गोवर्धन है, जमुना है। केवल भाव की बात है ना, भाव डिफरेंट हो गया तो आपका अनुभव डिफरेंट हो गया। तो वो भाव जो हमको अर्जित करना है उसको ही साधना भक्ति कहते हैं, जिससे हम भाव को बटोरते हैं, भाव को प्राप्त करते हैं। तो जीवन का लक्ष्य क्या है, वो वृंदावन धाम में जाना है हमको, और जब तक नहीं जा पा रहे हैं उस भाव में रहना है वृंदावन धाम के, क्योंकि इस भाव में भी वृंदावन है। जब तक शरीर से वहाँ जाने का, या शरीर में जब तक है, यहाँ का कुछ कालावधि है, उससे हम बद्ध है, जब तक हम नहीं जा पाते हैं, तो तब तक भाव के रूप में वृंदावन का अनुभव आपको हो सकता है। और जब शरीर से हम योग्य हो जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, तो हमारी आत्मा को भगवान दिव्य देह देकर गौलोक धाम लेके जाएंगे। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य वैकुंठ की प्राप्ति, गोलोक की प्राप्ति नहीं है। जाना तो है सबको, लेकिन उद्देश्य वो नहीं है। उद्देश्य भगवान की निरपेक्ष प्रेमपूर्ण सेवा करना है। उस निरपेक्ष निस्वार्थ प्रेमपूर्ण सेवा के अंदर ही सब कुछ है, धाम है, भगवान है, राधा रानी है, उनके पार्षद है, लीला है, सब कुछ है उसके अंदर। अलग अलग चीज मांगने की जरूरत नहीं। भगवान आप होंगे ना, आपका घर होगा ना, वहां पर राधा रानी भी होंगी ना, ऐसे अलग अलग मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। प्रेमपूर्ण सेवा करेंगे तो प्रेमपूर्ण सेवा के एरिया में आपको ये सब कुछ मिलेगा। इसलिए हम लोग ना अलग अलग पृथक पृथक कुछ चीज़ों को मांग नहीं करते हैं, लिस्ट बना के सबमिट नहीं करते हैं, एक ही चीज़ करते हैं, प्रेमपूर्ण व निस्वार्थ सेवा। उसी के अंदर भगवान अपने धाम के साथ, पार्षदों के साथ, लीलाओं के साथ समाये हुए हैं। जिस समय आप प्रेमपूर्ण निस्वार्थ सेवा करना आरम्भ करोगे, उसी समय आपको भगवान के सारे एंटराज के होने की अनुभव अनुभूति प्राप्त होगी। और यही आध्यात्मिक जीवन है। और आध्यात्मिक जीवन में श्रद्धा से आरंभ होता है। अगर श्रद्धा नहीं है ना, तो मैंने आज अभी एक डेढ़ घंटा जो कुछ बोला वो सब बकवास है। आप भी समय बर्बाद कर रहे हैं, मैं भी समय बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन अगर श्रद्धा है तो सारी चीज़ें जो बताई हैं वो अर्थपूर्ण हैं, ऑल मीनिंगफुल। नॉट ओनली मीनिंगफुल, उसमें खचाखच अनुभूतियां साक्षात्कार भरे हुए हैं, जो हम सब लोग अनुभव कर सकते हैं। अभी किसी ने मुझे, प्रभु जी ने खीर ला के दिया है ना, वो जब खाऊंगा तो कुछ अनुभव होगा ना, कि मीठा भी है, दूध का भी है, दूध भी A2 गाय का है, प्रेम से बनाया हुआ है, रात को रखा हुआ है, ऐसा बहुत सारे अनुभव आएंगे। और अगर किसी के घर पे जाऊंगा और वहाँ पर भी मुझे खीर देंगे कि हमने भी बनाई थी, हमने भी रखी थी, वो अलग टेस्ट होगी, और वो सब भाव का अनुभव भी होगा कि नहीं होगा। वैसे स्पिरिचुअल लाइफ का अनुभव होता है, और अनुभव कभी झूठा नहीं होता है। यू कैन नॉट क्रॉस चेक द अनुभव। अनुभव एक अनुभव है, अगर मीठा लगा तो मीठा है वो, हाउ कैन आई से नो। और आम की मिठास अलग है, मधु की मिठास अलग है, चीकू की मिठास अलग है, सब मीठा है, लेकिन हमको पता है कि ये चीकू है, ये आम है, ये मधु है। यहाँ तक अपना डिफरेंशियल अनुभव हमको होता है, जो भगवान ने हमको कैपेसिटी दी हुई है ना आपको अनुभव करने की। तो अनुभव से प्रताड़ना कैसे कर सकते हम? नहीं नहीं, मैं खा रहा हूँ मीठा है, लेकिन आई डोंट बिलीव इट इज मीठा, ऐसा नहीं कर सकते ना हम लोग। जो है, जो आप चख चुके हैं, उसका स्वाद ले चुके हैं, उसकी सच्चाई के बारे में आपको अनुभव तो इधर हुआ है, तो उसको आप प्रताड़ना नहीं कर सकते हैं। वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ है। दुनिया हमारे भक्तों को पागल कह सकती है, सब लोग पागल लोग हैं, सब छोड़ के बैठे हुए हैं, सर मुंडवा के कुछ कुछ कर रहे हैं, सब कुछ त्याग कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, दुनिया में इतनी खुशी है, सब लौट के यहाँ पर क्यों बैठे। लेकिन उनको जो अनुभूति हो रही है उसका आपको अनुभव भी नहीं है, पता ही नहीं आपको। तो वो अपने आत्मा के सर पर, अंदर हृदय के अंदर क्या अनुभव कर रहा है उसको आपको पूरी जानकारी भी नहीं है। और आप बोल रहे हैं कि वो कल्पना कर रहे हैं, कोई दुनिया है जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, प्यार ही प्यार बलता, ऐसा कोई है नहीं। लेकिन है, जो श्रद्धा रखते हैं और उस मार्ग में है, उनके लिए सब कुछ सच है और वो निरंतर वहाँ जाने के लिए कार्यरत रहते हैं कि हमको पहुँचना है वहाँ पर। और वहाँ पर पहुँचने के बाद में आपको पता चलेगा कि ये वास्तविक है, ये कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं है। तो आइए हम सब इस वृंदावन धाम के बारे में समझें। और ये वृंदावन धाम अनंत है, इसके अंदर अनंत लीलाएं भगवान ने की है। ऐसा धाम है जहाँ पर देवताओं को भी प्रवेश नहीं है, देवता भी लालायित रहते हैं प्रवेश करने के लिए, लेकिन क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं रहती है, देवताओं के अंदर भी बहुत सारी इच्छा रहती है, इसलिए उनको वहाँ पर प्रवेश नहीं है। जो निरीच्छ है, निरपेक्ष है, निस्वार्थ है, भगवान की सेवा में रत है, उनको ही वहाँ पर प्रवेश मिलता है। चप्पल पहनने का भी अधिकार नहीं उनको, कभी आना ही है तो दिन दिन में आना है, अपने वाहन सब ब्रज के बाहर पार्क करना है। कोई मोर पे बैठ के आ रहा है, कोई कौवे पे बैठ के आ रहा है, कोई गधे पे बैठ के आ रहा है, कोई भैंसा पे बैठ के आ रहा है, सब देवता लोगों का अपना अपना वाहन है। कोई ऊंट पे बैठ के आ रहा है, कोई चूहा पे बैठ के आ रहा है, वो सब वाहन ब्रज के बाहर खड़े करने हैं आपको। कोई हीरा और क्या कहते हैं रत्नों के और सोने की चप्पल पहन के आते हैं, मोजड़ी पहन के आते हैं, वो सब कुछ बाहर रख के आना है। नंगे पैर आना है, दिन दिन में भगवान से कुछ काम है तो मीटिंग करना है, और रैन बसेरा नहीं है वहाँ पर। नो नाइट स्टे, नो रूम अवेलेबल फॉर डेमिगॉड्स, रात को ही दिन में ही चले जाना है। इतनी पावन भूमि है वो, कौन रहते हैं वहाँ पर, किनको रात को रहने का परमानेंट रहने का अधिकार है? जो भगवान की प्रेमपूर्ण निस्वार्थ सेवा करते हैं वही वहाँ रहते हैं। और वो सब ये यशोदा, आनंद महाराज, कृष्णानु महाराज, कीर्ति मैया, गाय बैल, गाल बाल, गोपियाँ, वो सब वहाँ निवास करते हैं। लगते गंवार हैं लेकिन प्रेम के कारण भगवान के विशिष्ट मर्जी के लोग है ये, भगवान के साथ रहते का भाग्य प्राप्त है उनको। बाकी लोग दूर से बात करके ऑफिशियल चले जाते हैं, ये सब लोग वहाँ भगवान के साथ लीला करते हैं, भगवान का जूठा खाते हैं, भगवान के साथ लीला करते हैं, नाचते हैं, दौड़ते हैं, घूमते हैं भगवान के साथ। बहुत सुंदर जीवन है, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं तो फिर मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी ये सब करने में क्यों आता, क्या जरूरत है? अगर इसमें कुछ दम ही नहीं है, सब बकवास है समझो, तो 40 साल क्यों फॉलो करता है इसको? 2 साल में समझ जाता कि बकवास है, छोड़ देता उसको। 38 ईयर्स और कुछ करता, आनंदमय आरंभ, मज़े कर लेता, है ना? अभी तक क्यों लगा हूँ इसके अंदर? क्योंकि हर साल, हर दिन, हर महीना और हर साल उसके अंदर नया नया उत्साहजनक अद्भुत चीज़ों का अनुभव होता है। और इतना अनुभव हो गया है तो और कितने अच्छे अनुभव होने वाले हैं, उसके उत्सुकता में और लगे रहते हैं और नए नए अनुभव आते रहते हैं। ऐसे देखिए, यहाँ पर पहली बार कथा कर रहा हूँ मैं, कई साल से कथा कर रहा हूँ, फिर भी क्यों और कथा कर रहा हूँ? क्योंकि इतना आनंद है उसके अंदर। छुट्टी लेकर आया हूँ मैं, हाँ, बिकॉज इट इज ऑल ट्रूथ, इट इज नॉट फॉल्स, इट्स नॉट इल्यूजन, कोई भ्रम नहीं है, ये सत्य है। वो भगवान का धाम भी सत्य है, वो भगवान भी सत्य है, उनके होने की अनुभूति भी सत्य है, उनके द्वारा की गई जो लीला है हमारे जीवन में वो भी सत्य है। जो हमारे संत कहते ना, जे थे जातो ते थे तू माजा सांगाती, साल विषि हाथी धरुनिया, हाँ, कि मैं हर समय आपके अस्तित्व का अनुभव करता हूँ कि आप हैं, और केवल आप है नहीं, मेरा हाथ पकड़ के चल रहे हैं, रोज मुझे जीवन के रास्ते में ले जा रहे हैं इस पूरे जंजाल से, हाथ पकड़ के, जैसे कोई पिता और माता कोई मेले में अपने बेटे को ऐसे लेके जाता है बाहर भीड़ में से और घर पहुंचा देता है, वैसे उंगली पकड़ के भगवान अपने भक्त को हर दिन हर क्षण लेके जा रहे हैं अपने धाम की ओर। बाकी सारे लोग जो है मृत्यु का रास्ता नाप रहे हैं, है कि नहीं? बाकी सारे लोग अथक, मतलब बिना रुके, निरंतर कांस्टेंट स्पीड में मृत्यु की ओर यात्रा कर रहे हैं। तो भक्त के लिए क्या होता है? यात्रा चेंज होती है। भक्त के लिए वही भगवान उनका हाथ पकड़ के इस दुनिया से बाहर निकलने का और अपने धाम में लेके जाने का रास्ता सिधार रहे हैं भगवान। सब लोग जर्नी कर रहे हैं, हम भी जर्नी कर रहे हैं, वो भी जर्नी कर रहे हैं, लेकिन सब लोग मृत्यु की ओर जर्नी कर रहे हैं और हम लोग भगवान की उंगली पकड़ के भगवान के धाम में जा रहे हैं। इस प्रकार से हम पर काल का प्रभाव नहीं होता है। लोग पूछते हैं कि काल का प्रभाव आपके ऊपर कैसे नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं शास्त्र में लिखा है काल का प्रभाव नहीं होता है, आप भी बूढ़े हो रहे हैं, आपके बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं, आपको भी बीमारी लग रही है, किसी को कैंसर हो रहा है, भक्त लोग कितने कैंसर से मरते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके ऊपर काल का प्रभाव नहीं हो रहा है? क्योंकि इस समय के बाद में जब शरीर छूटेगा तो हम अपने आप को भगवत धाम में पाएंगे, ये काल का प्रभाव का निगेशन है। और यहाँ मरेंगे किसी रोग के कारण और वापस नरक में या स्वर्ग में या पृथ्वी पर आएंगे मनुष्य बनकर या जानवर बनकर, मतलब काल का प्रभाव हम पर है। और भक्ति करने से भगवान स्वयं हमें अपने काल रूप के प्रभाव से स्वयं उंगली पकड़ के मुक्त कराते हैं और उसकी भी अनुभूति होती है, इसलिए इतने विश्वास के साथ में ये बात कह सकते हैं, है ना। ये तो कोई रट के डायलॉग बोल के एक्टिंग सीख के नहीं आए यहाँ पर आपको बताने के लिए, ऐसे ऐसे बोलेंगे तो प्रभाव होगा, ऐसे नहीं है, ये बात दिल से की जा रही है क्योंकि वो अनुभव की बात है। कई ऐसे जनवन में अनुभव है जिसके द्वारा हमको भगवान के होने की अनुभूति प्राप्त है और पता भी चल रहा है कि ये भगवान ने अपने हाथ से किया हुआ है और अपने प्रत्यक्ष डायरेक्शन दे रहे हैं, प्रत्यक्ष दिशा दिखा रहे हैं, दिग्दर्शन कर रहे हैं। तो आइए मायूस न हो जाए, जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन जब तक वृंदावन धाम में भगवान हमें बुला रहे हैं कोई चिंता की जरूरत नहीं। कितना भी कष्ट हो अभी एक ही बार हो जाने दो, क्योंकि ये भी एक बार होगा वो दोबारा नहीं होगा, इसलिए जितना होना है उतना हो जाने दो, लेट इट बी, एक बार यहाँ का हिसाब किताब समाप्त करो। अंत जो है बहुत उज्जवल है, बहुत प्रकाशमान है, बहुत होप गिविंग है, आशादायक है ना। तो इस आशा के साथ भक्त अपना जीवन बिताता है और उसको कदम कदम पर दिव्य अनुभव आते हैं, तो उसको पता चलता है कि आशा भी निरर्थक नहीं है, आशा बहुत यूजफुल मीनिंगफुल है, अर्थपूर्ण है। उसको लेकर चलेंगे तो वो आशा का परिणाम हमको हर समय मिलेगा, अंत में मिलने की जरूरत नहीं है, अभी मिलेगा, इतना सुंदर जीवन है ये। तो आइए, वृंदावन धाम जाने का समय नहीं है तो गोवर्धन इको विलेज में आइए, यहाँ पर भगवान की अनुभूति, यहाँ पर भी कदम कदम पर कण कण में भगवान है, सत्य बात है ये, आप उसको अनुभव कीजिए। समय मिलेगा तो वृंदावन जाइए, वहाँ पर जमुना गोवर्धन वृंदावन का दर्शन कीजिए, अनेक वन है वहाँ पर, वहाँ अनंत लीला हुई है, वहाँ का दर्शन कीजिए, साधुओं का संग कीजिए, प्रसाद पाइए, जमुना में स्नान कीजिए, लीला सुनिए भगवान की, भक्तों की सेवा कीजिए, व्रत कीजिए कार्तिक का, भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान आपके हृदय में बैठे हुए हैं, खाली उसकी अनुभूति करना बाकी है बस, ठीक है। जय जय श्री राधे श्याम। कोई प्रश्न है किसी का? Any question? Thank you very much.